ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदान स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत पूरे विश्व में सब भाषाओं में विश्व भर के कल्याण के लिए प्रचार प्रसार हो रहा है। उसके अंतर्गत यहाँ कृष्ण मंदिर रानीबाग में आज पांचवें दिन कृष्ण गोपाल सोरी और परिवार ने अपनी माता की स्मृति में जो 7 दिन का सत्संग रखा है उसमें आप सबका स्वागत और सोरी परिवार और कृष्ण मंदिर के सभी पदाधिकारी और विप्रों का धन्यवाद करते हुए आज की कथा में रसास्वादन करने के लिए प्रवेश करते हैं। कल 7वें स्कंद में भगवान श्री नरसिंह देव का प्रकट अपने दैत्य बालक प्रहलाद की रक्षा के लिए और फिर 8वें स्कंद में भगवान वामन देव का प्रकट्य, बलि महाराज महाभागवत है, वचन पालन के ऊपर इतना अटल था, भगवान को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य ने मना किया, उसकी बात को भी नहीं माना, और भगवान छल करके आए थे ब्राह्मण के रूप में, लेकिन फिर भी वचन से बिल्कुल हिले नहीं, और इसलिए बलि महाराज को महाभागवत कहा जाता है। और वो आत्मनिवेदन, नौ प्रकार की भक्ति में जो आत्मनिवेदन है, आत्मनिवेदन का अर्थ होता है समर्पण सारा भगवान को करना। आत्मक मतलब अपने आप को, निवेदन करना मतलब अर्पण करना, जो अपने आप को भगवान को अर्पण कर दे। उन्होंने अपने मस्तक को भगवान के तीसरे पग को, चरण को रखने के लिए अर्पित कर दिया। इसका अर्थ उन्होंने जो अहंकार है, अपना मैंपना है, उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। इस दुनिया में मैं मेरा कभी जाता नहीं है, और मैं और मेरा, तू और तेरा, इसको माया कहते हैं, और ये दो शब्द संसार में बंधन का कारण है। और वेदों में जब यज्ञ करते हैं तो दो शब्द को बोलते हैं, इदम न मम, ये हमारा नहीं है, ये भगवान का है, ये हमारा नहीं है, ये भगवान का है, ये हमारा नहीं है, तो उसको कहते हैं अमृत। जब हम कहते हैं हमारा नहीं है, सब भगवान का है, तो उसको कहते हैं अमृत, और जब कहते हैं हमारा है, तो फिर वो समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन बलि महाराज ने अपने आत्मसमर्पण को भगवान वामन देव को किया, भगवान प्रसन्न हुए, और फल क्या मिला? फल मिला भगवान का दर्शन। वामन देव वचन दिया कि मैं आपके सूतल लोक को मैंने ऐसे बनाया है जो स्वर्ग से महान है, इंद्र के स्वर्ग से ज्यादा सूतल लोक में सुविधाएं हैं, और मैं वहां आपके दरवाजे के ऊपर चौकीदार बन के खड़ा रहूंगा। अब कोई बलि महाराज को कुछ घाटा पड़ा क्या? भगवान को सब कुछ देने से भगवान मिल गया? ऐसे भगवान को जो समर्पण करता है उसको भगवान मिलता है, जो भगवान से मांगता है उसको दुनिया मिलती है। ऐसे अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता लेने के लिए गए थे लड़ाई से पहले। भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, एक तरफ मैं अकेला वो भी युद्ध नहीं करूंगा, और एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना है, कृतवर्मा सेनापति, यदुवंशियों की सेना। अब दोनों में से आपको चुनना है, लेकिन अर्जुन तुम छोटे हो, तुम्हें मैंने पहले देखा था, पहले तुम चुन लो। तो लड़ाई होने वाली है तो बगैर लड़ने वाला एक आदमी अच्छा है कि पूरी सेना अच्छी है? सेना अच्छी है, लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे श्री कृष्ण, आप भले लड़ो न लड़ो, हमारे साथ रहो। तो ऐसे जो भगवान को मांग लेता है उसको कहते हैं शरणागति, जो भगवान से मांग लेता है उसको संसार मिलता है, जो सदा रहने वाला तो है नहीं। तो बलि महाराज ने अपने आप को भगवान को अर्पण करके भगवान को प्राप्त कर लिया। आगे का एक अध्याय रहता है आठवें स्कंद का, वो आज पूरा करेंगे। उस अध्याय में कथा ऐसी आती है, फिर भी वचन के पालन की ही कथा है। आठवें स्कंद पूरे में मनवंतर, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन चलाने के लिए आते हैं, तो वो किसी सद्धर्म की स्थापना करते हैं। एक मनु ने एकादशी व्रत को चालू किया, एक मनु ने तपस्या चालू की, एक मनु ने वैकुंठ का यहाँ निर्माण कराया। तो हर एक मनु ने कुछ ऐसे ऐसे कार्य करे हैं, किए हैं, जो लोगों को सद्धर्म के ऊपर चलाने के लिए होते हैं। तो उस मनवंतर के अंतर एक वचन पालन का मेरे ख्याल इतना काफी है, ये गर्म भी करे। तो सत्यव्रत नाम का एक राजा नदी में स्नान करने के लिए गया। तो स्नान, एक तो नदी में स्नान करने का भी नियम होता है, गंगा में स्नान करना है तो कोई कूदने के लिए नहीं है, तैरने के लिए नहीं है, पहले तो उसको प्रणाम करना चाहिए, भगवान के चरणों का अमृत है। जैसे चरणामृत, भगवान का चरणामृत कहते हैं, जो भगवान को चरण धोया जाता है, तो गंगा भगवान का चरणामृत है। तो प्रणाम करके गंगा को भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए जहां से वो निकली। उसके बाद ब्रह्मा जी के करमंडल में आई है, उसके बाद शंकर जी की जटाओं में आई है। तो ऐसे ध्यान करने के बाद कि मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए आपका पहले पांव नहीं डालकर जल लेके आचमन करके पीना चाहिए, सर के ऊपर छिड़कना चाहिए, उसके बाद बहुत निम्रता से आज्ञा लेके प्रवेश करना चाहिए स्नान करने के लिए। और स्नान जब किया जाता है अंदर, तो फिर जल अंजलि में भर के तर्पण किया जाता है अपने पूर्वजों को, कि हमारे पूर्वज जहां भी हो उनको हम ये अंजलि, अंजलि हाथ की ये जो हथेली है इसको अंजलि कहते हैं। तो ये दोनों हाथों से जल लेकर अर्पण किया जाता है अपने पूर्वजों को। तो ये स्नान का भी एक, स्नान करना भी आना चाहिए। तो जब सत्यव्रत महाराज जैसे स्नान कर रहे थे, तो उनके हाथ में जब जल लिया तो उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। तो उन्होंने मछली को वापस फेंक दिया, क्यों, जल की मछली जल में जानी चाहिए। लेकिन मछली ने कहा, महाराज मैं आपके शरण में आई हूं, मुझे आप नीचे क्यों फेंक रहे हैं। तो महाराज का कोई बात नहीं, लोटे के अंदर रख ली, जो स्नान करने के लिए लोटा साथ ले गए थे उसमें पानी भर के घर लेके आए। घर आए तो मछली लोटे से बड़ी हो गई, लोटा कम पड़ रहा है महाराज मुझे, तो बहुत बड़ी परात में रख दी। थोड़ी देर के बाद परात छोटी पड़ गई, तो टैंकी में डाल दी, तो टैंकी छोटी पड़ गई। महाराज ने नदी में डाल गई, तो नदी में सेतु बन गई। महाराज ने कहा, आप कोई सामान्य मछली नहीं हो सकती, ये इतना बड़ा आपका आकार जो बढ़ रहा है, आप कौन है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैंने आपको वचन दिया है शरण देने का, मैं राजा हूँ, ये नदियाँ ये सब कुछ मेरे राज में आती हैं, आपको जहाँ स्थान चाहिए दे दूँ। तब मछली बोलती है कि महाराज मैं आपकी सेवा लेने के लिए आपके हाथ में आई थी, अब ब्रह्मा जी को जमाई आएगी दिन में, और जब जमाई ब्रह्मा जी को आएगी तो संसार में प्रलय हो जाएगी, और तब प्रलय का पानी चारों ओर सबको डुबा देगा। उस वक्त सबके बीज आप लेकर अंधकार होगा, केवल सप्त ऋषियों से निकलने वाला प्रकाश ही प्रकाश होगा। तब मैं आपको एक नाव नजर आएगी, आप उस नाव के ऊपर सप्त ऋषियों के साथ चढ़ना, सारे वनस्पतियों का बीज ले लेना, तब मैं आपको मत्स्य अवतार के रूप में नजर आऊंगा। सोने की मछली, उसके सर के ऊपर खूंटा होगा, और उस खूंटे से आप अपनी नाव को बांध देना, तो मैं आपको प्रलय के जल के सागर से पार निकालूंगा और सबकी रक्षा करूंगा। और ये कह गए, मत्स्य तो वहां से अदृश्य हो गया। महाराज सत्यव्रत वापस राज में आया, और थोड़े समय के बाद अचानक प्रलय हो गई, चारों ओर पानी ही पानी। और उस वक्त सप्त ऋषियों ने कहा कि महाराज सत्यव्रत नाव के अंदर बैठो, सब वनस्पतियों के बीज ले लो, प्रकाश इतना ही था जितना ऋषियों से निकल रहा था। तब सामने चमकता हुआ मत्स्य दिखाई दिया, मत्स्य के साथ नाव को बांधा। उस वक्त मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत को उपदेश दिया उस प्रलय के जल में, उस उपदेश का नाम है मत्स्य पुराण। जो मत्स्य पुराण 18 पुराणों में एक है, वो मत्स्य का उपदेश है सत्यव्रत महाराज को। और यही सत्यव्रत महाराज इस मनवंतर में जिसमें हम जी रहे हैं, ये सूर्य देव का पुत्र वैवस्वत मनु है, इसका मतलब भगवान ने जो इस सातवें मन्वंतर का मनु होने जाएगा उसको पहले सब धर्म का उपदेश देके तैयार किया, तब वो इस मन्वंतर का मनु बना सत्यव्रत। उसका नाम सत्यव्रत, आज जो मनु है इसका नाम है विवस्वत मनु। तो यहां आठवां स्कंद पूरा होता है। नवें स्कंद में 24 अध्याय हैं और नवें स्कंद को कहा जाता है ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान और अनु मतलब उसके अनुगामी, अनुगामी मतलब पीछे चलने वाले, मतलब भक्त। तो भगवान और भगवान के भक्तों की कथा के श्रवण करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, मन में फिर कोई संसार की वासना का बीज भी नहीं बचता। और नवम स्कंद को नवे स्कंद तक सुनने के बाद दसम स्कंद भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में प्रवेश होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हृदय को शुद्ध करने वाला नवा स्कंद है। इसके अंदर ऐसे महान भगवान के भक्त हुए हैं जिनके लिए भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा के लिए खड़ा हो गया, जो इस धरती के ऊपर गंगा को लाने में समर्थ हुए। और इस स्कंद के अंदर भगवान रामचंद्र के और भगवान परशुराम के और भगवान श्री बलराम और कृष्ण के अवतार का वर्णन, और जो इनको धरती पे लाने वाले महान भक्त है उनका वर्णन है। जैसे ऋषि भारद्वाज एक बार प्रयागराज में भगवान रामचंद्र लक्ष्मण और सीता के साथ आए तो कहते हैं सूर्य वंश में भागीरथ महान है क्योंकि धरती के ऊपर गंगा को लाए, सबके लिए गंगा जल उपलब्ध करा दिया। लेकिन महाराज भागीरथ से महान है दशरथ जो धरती के ऊपर भगवान रामचंद्र को लाए और जिसके राम राम लेने से आज तक पूरा विश्व का उद्धार हो रहा है। और मैंने जो जप तप जीवन भर में किया, ऋषि कहते हैं उसका फल आज मेरे को मिला कि भगवान रामचंद्र का सीता सहित और लक्ष्मण के साथ दर्शन हो गया। फिर एक बात बहुत अद्भुत कहता है कि आज मुझे राम जी सीता जी के दर्शन का फल ये है कि भरत जैसे महान भागवत का दर्शन हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, भगवान के दर्शन के बाद भी भगवान के भक्त का दर्शन जो है वो भगवान को पूरी भागवत में बार बार ये सुनने में आएगा। भगवान के दर्शन के बाद भी प्रचेताओं को क्रोध आया, ध्रुव महाराज लड़ाई करते हुए यक्षों को मारने लगे तो भगवान ने, पृथु महाराज ने भगवान का दर्शन किया, फिर भी कुमारों को, चार कुमारों का दर्शन हुआ, उनके संग की जरूरत पड़ी। ध्रुव महाराज को स्वयंभू मनु के संग की सलाह की जरूरत पड़ी, बलि महाराज को प्रहलाद के संग की जरूरत पड़ी, प्रचेताओं को नारद के संग की, भगवान को मिलने के बाद भी भक्तों के जरूरत पड़ती। तो इसलिए भगवान से भगवान का भक्त महान है। ये बहुत मुश्किल समझ में आने वाली है, क्यों? भगवान ने नियम बनाया मेरे पास आएगा तब उसका उद्धार करूंगा, लेकिन भगवान के भक्त तो आपके घर में आके आपको भगवान की कथा सुना के जाएंगे, भगवान का प्रसाद दे के जाएंगे, भगवान का नाम सुना के जाएंगे। तो भगवान ने अपनी कृपा भगवान अपने भक्तों के द्वारा बरसाने का नियम बनाया, स्वयं किसी को कुछ नहीं, सब भक्तों के द्वारा ही देते हैं। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है भागवत का कि इतने महान भक्तों का इसमें चरित्र है। 12 अध्यायों में सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन है और 12 अध्यायों में चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन है। सूर्य वंश कहां से शुरू होता है? सूर्य से, भगवान सूर्य नारायण से शुरू होता है और ये सूर्य नारायण को आदित्य कहते हैं, ये कश्यप और आदित्य का पुत्र है। इस भगवान सूर्य, ये सिद्धांत भी एक समझना चाहिए, देखो रोज सुबह रोशनी होती है, दिन होता है, हम मानते हैं कि सूर्य उग गया, तो ऐसे सूर्य की रोशनी से मान लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन सूर्य को देखना चाहें तो भी सुबह सवेरे देख सकते हैं, शाम को अस्त होते समय देख सकते हैं, दोपहर को जरा देखना मुश्किल होता है, बहुत तेज होता है, लेकिन देखना चाहो तो देख सकते हो। लेकिन ये मानना कि इस आग के जलते हुए गोले में एक महाराज है जो वहां का राष्ट्रपति है, सूर्य लोक का, उसका नाम विवस्वान है, ये मानना बहुत मुश्किल है, ये मानना आसान नहीं है। प्रकाश को मानना आसान है, सूर्य के गोले को देखना भी ठीक है, लेकिन सूर्य के अंदर सूर्य नारायण भगवान रहता है, उसके पिता का नाम कश्यप है, माता का नाम आदित्य है, उसकी दो पत्नियां हैं संज्ञा और छाया, यमुना, यमराज, शनीश्वर उसके पुत्र हैं, ये बात मानना इतना आसान नहीं है। अश्विनी कुमार उसके दो पुत्र हैं जो वेदों के, जो देवताओं के वैद्य हैं, ये बात मानना आसान लग रहा है क्या? और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस सूर्य भगवान को मैंने गीता का उपदेश दिया, चौथे अध्याय में ऐसे कह रहे हैं। इसलिए ब्रह्म करके भगवान को मानना आसान है कि भगवान प्रकाश है, ज्योति है, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, जैसे सूर्य की रोशनी को मान लेना। परमात्मा करके भगवान को मानना भी आसान है, क्योंकि वो बाहर निकल के सूर्य को देख सकते हैं, वो तो ऊपर सर के, सबके सर के ऊपर है, परमात्मा सबके सर के ऊपर है, लेकिन भगवान करके भगवान को मानना आसान नहीं, और बहुत से लोग यहां चूक जाते हैं, भगवान शब्द को मानने में उनको परेशानी होती है, क्योंकि ये श्रद्धा के ऊपर है, ये विश्वास के ऊपर है, ये शास्त्र के आधार पर माना जा सकता है, संत की वाणी से माना जा सकता है, अपने किसी तर्क वितर्क से भगवान को नहीं समझ सकते। सूर्य के अंदर, इस गोले के अंदर एक व्यक्ति रथ के ऊपर चढ़ के घूमता है, कौन मानेगा? तो इसलिए भगवान को मानने के लिए बहुत बड़ी श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता है, और ये भागवत शास्त्र भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करता है। ब्रह्म का वर्णन करने वाले बहुत से उपनिषद हैं, परमात्मा का ध्यान करने वाले बहुत से योग शास्त्र हैं, लेकिन भगवान का वर्णन करने वाला सब जगह नहीं मिलेगा, और सब जगह है भी नहीं, और इसीलिए व्यास देव को नारद जी ने कहा था, आपने शास्त्रों में ब्रह्म परमात्मा स्वर्ग का तो वर्णन किया, लेकिन भगवान को एक जगह ऐसे आपने प्रतिष्ठित नहीं किया है कि लोग उसको समझ के उसके भक्त बन के अपने जीवन को सफल कर सके, ये आप नहीं किया, इसलिए आप ही संतुष्ट नहीं है, तो आपके पुस्तक पढ़ के लोग कैसे संतुष्ट होंगे? अगर भगवान को देखना है तो पहले स्कंद में हमने दो दिन लगाए थे, कैसे पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण व्यवहार कर रहा है, भक्त वत्सल बन के अपने भक्तों को रक्षा करता है उनको, ये जो भगवान का भाव है भक्तों के प्रति, वो दीन दयाल है, दीन वत्सल है, भक्त वत्सल है, वो तो पति तपावन है, पतितों का उद्धार करने वाला है, तो ये बहुत आसान नहीं है मानना। तो सूर्य देव का एक पुत्र विवस्वान के पुत्र का नाम है विवस्वत, उसको बोलते हैं मनु, विवस्वत मनु, उसका दूसरा नाम है शरदवान। इसके 10 पुत्रों से सूर्य वंश चला, इस मनु के 10 पुत्रों का वर्णन है। अब इन 10 पुत्रों में कल एक संकेत में बताया था, पहला सदामन्य नाम का पुत्र हुआ जो शंकर जी के इलावर्त वर्ष में गया तो लड़के से लड़की बन गया, फिर उससे बुद्ध ने विवाह कर दिया, पुररुआ हुआ, वहां से चंद्रवंश शुरू होता है। इसके बाद दूसरा महाराज शरियाती, बहुत बड़े सूर्य वंश के एक महाराज शरियाती हुए, वो महाराज शरियाती उनका बेटा आनर्त जिसके नाम से आनर्त देश ये द्वारका की धरती, ये धरती का टुकड़ा नहीं है, ये वैकुंठ से 100 योजन शरियाती के बेटे आनर्त के लिए भगवान ने उसकी भक्ति से तपस्या से प्रसन्न होके दिया जो धरती के ऊपर ये टुकड़ा उतरा। शरियाती की बेटी का नाम सुकन्या था, उसको लेकर च्यवन ऋषि के आश्रम में गया। तो बच्ची छोटी खेलते हुए किसी तिनके से किसी सोराख में किसी जीव को मार दिया, तिनका वहां से खून निकला। क्या था उसको मालूम नहीं बच्ची को, लेकिन सबका हवा पानी बंद हो गया, राजा और राजा की सेना का। तो महाराज शरियाती ने समझा कि हमसे कोई अपराध ऋषि का हो गया है, ऋषि के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि महाराज क्या हो गया मालूम नहीं। पूछा सबसे तो बेटी ने कहा पिताजी मुझे मालूम नहीं, यहाँ इस सोराख के अंदर बिल के अंदर कोई चमक रहा था, मैंने तिनका मारा, अंदर से खून निकला। तो ऋषि च्यवन को कहते हैं शरियाती जी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ हमारी कन्या से कुछ आपके आश्रम में अपराध हो गया है, आप क्षमा कर दो, हमारी पूरी सेना हवा पानी बंद हो गया है, बड़े दुख भोग रहे हैं। तो महाराज च्यवन तब बहुत बूढ़े हो गए थे, वो अपने शिष्यों को कहा मेरी आंख को ऐसे ऊपर करो, उस कन्या की सुकन्या को देखा और देखते रह गए। महाराज बुद्धिमान था, समझ गया कि विवाह करना चाहता है कन्या से, कहा महाराज आपको ये मैं कन्या दान करके जाऊं। च्यवन ऋषि ने कहा ठीक है और सब ठीक हो गए। उस बूढ़े के साथ ये अपनी नौजवान कन्या को विवाह करके राजा लौटा वापस। च्यवन ऋषि ने दोनों अश्वनी कुमार वैद्यों को बुलाया देवताओं के और कहा देखो देवता लोग आपको अमृत तो पिलाते नहीं, आपको तो डॉक्टर करके रखा है वैद्य, आप देवता तो हो नहीं। मैं च्यवन आपको वचन देता हूं आपको देवता बना दूंगा, आप मेरे को जवान बना दो। तो अश्वनी कुमार ने कहा ठीक है। उन्होंने अमृत का कुंड तैयार किया और च्यवन के साथ उसके अंदर दोनों चले गए, दो अश्वनी कुमार तीसरा च्यवन। जब महार निकले तो तीनों नौजवान होके निकले और तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब बेचारी सुकन्या कहती है देखो मैं पतिव्रता हूं, मेरे भाग्य में जो मेरे पिता ने दिया था वही मेरा पति है, अब बताओ कि मेरा पति कौन है आप में से। तो अश्वनी कुमार प्रसन्न होकर कहते हैं ये तुम्हारा पति च्यवन है। तो च्यवन को अश्वनी कुमारों ने बना दिया नव युवक और मार्केट में च्यवनप्राश आमजाम हो गया, च्यवनप्राश खाओ जवान बन जाओ। उसका नाम च्यवनप्राश रख दिया लोगों ने कि च्यवनप्राश के डब्बे चलने लग गए, अब कोई उससे जवान हुआ नहीं उसके बाद। वो जो डब्बे बेचते हैं वो जवान हो रहे पैसा कमाए, खाने वाले को कोई लाभ नहीं हो रहा है। सोच अब शरियाती के मन में आया कि एक यज्ञ करा लो मैं और यज्ञ अपने जामाता शरियाती को जाके च्यवन को लेके आता हूं। वो गया तो अपनी बेटी को देखे नौजवान के संग बैठी है, तो महाराज ने कहा कुलीन सूर्य वंश की बेटी तुम्हारा विवाह मैंने बूढ़े ऋषि से कराया था, ये नौजवान कौन है बेटी। बोला पिताजी ये वही च्यवन ऋषि है, अश्वनी कुमार ने इन्हों को दोबारा जवानी दे दी। पिताजी प्रसन्न हुआ, ले गए च्यवन ने यज्ञ किया और जब यज्ञ में अमृत निकला तो च्यवन ऋषि ने कहा इन अश्वनी कुमारों को अमृत पिलाओ, इंद्र ने बोला नहीं पिलाऊंगा। च्यवन ने इंद्र के हाथ को रोक दिया, इंद्र का हाथ अटक गया। इंद्र इसको आज के बाद देवता मानना पड़ेगा, हमने देवता मान लिए। तो च्यवन ऋषि ने इस पर तो ये शरियाती के बाद इस वंश में वर्णन आता है महाराज अम्बरीश का। ये महाराज अम्बरीश सूर्य वंश के ऐसे राजा है कि एकादशी का व्रत कर गया साल और फिर उस व्रत के कर रहे थे 12 महीने के बाद व्रत को पूरा किया जाता है, तो वो जो व्रत पूरा करने के लिए खोल एक समय होता है जब एकादशी रखते हैं ना, तो द्वादशी को पारण का समय होता है, इसको बोलते हैं व्रत के पारण का समय। वो समय प्रायः 6:30 से लेकर 9:30 तक होता है, लेकिन एकादशी में सिर्फ 15-20 मिनट होता है। तो एकादशी के व्रत का पारण समय के अंदर किया जाता है तो फल मिलता है, नहीं किया जाता है तो कोई खास फल नहीं होता है। तो महाराज पारण के लिए तैयारी कर रहे थे और दुर्वासा ऋषि आए और कहा कि महाराज हम भोजन करेंगे। महाराज ने कहा हमारा आपका स्वागत करते हैं, हमारा सौभाग्य कि आज द्वादशी के पारण के समय ब्राह्मण आ गया अपने आप, मैं स्नान करके आते। वो स्नान करने चले गए और वो स्नान करने चले गए और ब्राह्मण जो पूजा करा रहा था उसने बोला महाराज द्वादशी के पारण का समय हो गया है, अगर आप पारण नहीं कर पाएंगे तो आपके व्रत का फल नहीं होगा 12 महीने का। अम्बरीश महाराज कहते मैंने तो अभी तक पहले ब्राह्मण को खिलाऊंगा तब मैं खाऊंगा, ब्राह्मण से पहले कैसे खा सकता हूं। महाराज आपको तो व्रत को खोलना ही चाहिए। बोला क्या करना चाहिए। बोला जल पी लो, तो खाना भी नहीं हुआ और व्रत भी खुल गया। वैसे नियम ये होता है कभी कभी कि अगर पानी कभी पानी नहीं, पानी से भी व्रत खुल सकता है, नहीं तो कोई ऐसी चीज जो एकादशी के दिन नहीं खाई है, व्रत की चीज लेकिन नहीं खाई है उससे भी व्रत खुल सकता है। अम्बरीश वापस आके ध्यान करके खड़े होकर कहता है तुम राजा लोग इतने बड़े अहंकारी हो गए हो, ब्राह्मण को खिलाने से पहले तुमने पानी पी लिया। बोला महाराज व्रत का समय निकल जा रहा था, भोजन तो नहीं किया, एक चलू भर पानी पिया है व्रत की मर्यादा पूरी करने के लिए। दुर्वासा शंकर जी का अंश है। अनुसूया जो देवहूति की और कर्दम की बेटी है, अनुसूया, अनुसूया उसको कहते हैं जो किसी में दोष न देखे। उसका विवाह हुआ अत्रि ऋषि से। अत्रि उसको कहते हैं जो तीनों गुणों से परे हो, और अत्रि भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर रहा था कि हे जगदीश मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। और भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के विष्णु आ गए, नंदी के ऊपर चढ़ के शंकर जी आ गए और ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ के आ गए। अब अत्रि कहता है मैंने जगदीश को बुलाया, आप एक के बजाय तीन आ गए। बोला हम तीनों जगत के ईश्वर हैं, मैं सृष्टि करता हूं ब्रह्मा जी ने कहा, और शंकर जी ने कहा मैं संहार करता हूं, भगवान विष्णु का मैं पालन करता हूं। बोला मैं तो आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं। और अनुसूया माता जी ने भी इन तीनों को अपने घर में बालक बनाया था तो उनको कहा मेरे पुत्र बन जाओ। तो आज भगवान विष्णु अत्रि और अनुसूया का पुत्र है दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय, दत्त कहते हैं उसको। ब्रह्मा जी अनुसूया और अत्रि के पुत्र बने चंद्रमा। और शंकर जी से के अंश से हुआ दुर्वासा। तो दुर्वासा ने अपने जटा से एक बाल निकाला और एक कृत्या बनाई। कृत्या क्या कहते हैं, कभी कोई जैसे काला जादू होता है ऐसे कोई अभिचार किया जाता है तो एक कृत्या बनती है। कृत्या का मतलब ऐसी राक्षसी जिसको कहा जाता है कि उसको मारो। और कृत्या का नेम ये है जिसने बनाई है उसके कहने के ऊपर जिसको कहा जाए उसको मारने जाती है। अगर मार लिया तो ठीक है, नहीं मारा तो वापस उधर ही आती है जिसने बनाया है उसको मारती। ऐसे प्रहलाद की कथा में आता है कि शंड और अमरक जो शुक्राचार्य के बेटे उनके गुरु थे उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या बनाई। कृत्या प्रहलाद के पास गई, प्रहलाद तो हरि के भजन कर रहा था, कृत्या उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। कृत्या वापस आई और शंड और अमर को मार दिया। और प्रहलाद को जैसे इस बात का पता लगा बोला हमारे गुरुजनों को ऐसे मरना ठीक नहीं है। प्रहलाद ने हाथ ऊपर करके कहा हे भगवान हे हरि हे गोविंद, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने मुझे हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा, जिन्होंने मुझे आग में जलाना चाहा, जिन्होंने मुझे पहाड़ से फेंका, उनके प्रति अगर मेरे हृदय में जरा भी द्वेष न हो तो मेरे गुरु के बच्चे जीवित हो जाए। और दोनों वापस जीवित हो गए। तो ये साधु की परिभाषा है। लेकिन इसने, दुर्वासा ने कृत्य बनाई और कहा कि अम्बरीश का विनाश कर दो। अम्बरीश तो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्य को खत्म कर दी। तो कृत्य कुछ बिगाड़ नहीं सकी, लेकिन अब सुदर्शन चक्र अम्बरीश के पीछे पड़ गया और अम्बरीश भागा आगे पीछे, चक्र ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी को कहता है मेरे को शरण में लो। ब्रह्मा जी कहता है क्या हो गया? बोला पीछे चक्कर। बोला जिसका चक्कर, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, चलो आगे। वो दुर्वासा जी भागते हुए शाश कैलाश पे गए, शंकर जी को कहा मेरी रक्षा करो। बोला क्या हो गया दुर्वासा? बोला पीछे चक्कर है। बोला जिसका चक्कर है उसके पास जाओ, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वो कोई चक्कर में पड़ने को जब तैयार नहीं था, तब भगवान विष्णु को जाके प्रणाम करता है अम्बरीश। भगवान विष्णु कहते हैं अहम भक्त प्राधीन हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मेरे अपराध को तो मेरे भक्त छुड़ा सकते हैं, लेकिन भक्त के अपराध को मैं नहीं छुड़ा सकता हूं। आपने भक्त का अपराध किया है, अब आपको सुदर्शन चक्र से छुड़ा सकता है तो अम्बरीश छुड़ा सकता है, और कोई नहीं छुड़ा सकता है। भगवान विष्णु ने कहा वापस अम्बरीश के पास जाओ, और वहां से वो अम्बरीश के पास आया। एक साल बीत गया इस दुनिया की दृष्टि से, देवलोक में तो एक दिन भी नहीं हुआ। 6 महीने हमारे बीतते हैं तो देवताओं का दिन होता है, और हमारे वह 6 महीने रात, 6 महीना दिन, तो 1 साल देवताओं का हमारा 1 दिन रात होता है। ऐसे समय ऐसा होता है, टाइम का इतना अंतर है दोनों जगहों में। अम्बरीश वापस आके हाथ जो अम्बरीश के सामने दुर्वासा ने हाथ जोड़ के कहा क्षमा करो, इस सुदर्शन चक्र को रोको। अम्बरीश ने कहा महाराज ब्राह्मण आप प्रणाम मत करो। सुदर्शन चक्र को हाथ जोड़ के अम्बरीश ने कहा हे भगवान के आयुध, भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान चक्र का धारण करते हैं, चक्र पाणी को प्रणाम करता हूँ, चक्र को प्रणाम करता हूँ, अब चक्र इस ब्राह्मण को क्षमा कर दो। ओ चक्कर शांत होकर चला गया और फिर अम्बरीश को भोजन कराया। अम्बरीश ने पहले दुर्वासा को भोजन कराया फिर व्रत खोला। अब कभी कभी कोई कह सकता है कि दुर्वासा ने क्रोध किया, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका समझने की बात यह है, दुर्वासा ने एक भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए ये सब कुछ किया, नहीं तो कैसे पता लगता कि भक्त की रक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र करता है। तो कभी कभी भगवान के भक्त भक्ति को प्रकट करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं जिससे भक्त की महिमा का पता लगता है। तो दुर्वासा ने अम्बरीश की भक्ति की महिमा का यहाँ परिचय दिया और भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की। और इसके बाद सौबरी ऋषि का सूर्य वंश में वर्णन आता है। एक महाराज मांधाता मथुरा के बहुत बड़े राजा हुए हैं। वैसे कोई नवे स्कंद की कथा करता नहीं है और आपको सुनने को भी नहीं मिलती होगी, लेकिन इसमें इतने भगवान के भक्तों के नाम हैं और उन नामों का ही उच्चारण करने से भगवान मिल जाता है। कभी कभी सिर्फ नाम का उच्चारण करें ना आदमी जाने अनजाने में, तो भी बहुत बड़ा लाभ होता है। एक बार, ये तो सच्ची घटना है, अमेरिका के अंदर नए नए मंदिर खुले थे हमारे, कुछ बदमाश लोग आए और भक्तों को लूटना चाहे, तो भक्तों में से किसी ने मारा तो कोर्ट में केस चला गया। तो कोर्ट में वो साक्षी देने के लिए एक बहुत सरल सा भक्त था, कुमार ऐसे नाम था कुछ, उसको जज पूछता है उस वक्त जब ये अंदर आए थे तो कौन कौन उधर था। वो बेचारा नंद कुमार डर रहा था, अब विचार किया कौन कौन था, ऐसे नाम याद आया, गोपीनाथ था, गोपाल दास था, संकृष्ण था, चार पांच भक्तों के नाम लिए, सारे ही भगवान के नाम थे। उसके हृदय के अंदर ऐसा बल आ गया और ऐसा उसने उधर बयान दिया कि सब जेल से निकल गए। केवल भक्तों का नाम उच्चारण करने से उसके हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो नाम कैसे भी लिया जाए, भगवान के भक्तों का नाम बहुत बड़ा लाभदायी होता है। इसलिए इतना सारा ये भक्त वहां के भक्त, क्या जरूरत थी व्यासदेव को इतना नाम लेने की, हम तो उसमें से 2% भी ले लेते, नाम बहुत ज्यादा है, नाम इतने महिमा वाले हैं। चार थे चोर, करते थे चोरी, लेकिन उन्होंने आपस में संकेत के जो शब्द रखे थे, बोला कोई दूर से आता हुआ नजर आए ना, तो बोला नारायण, मतलब नर आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है। तो दूसरे ने बोला तुम नजदीक में देखना तो उसके पास कुछ माल हो तो बोलना दामोदर, दाम मतलब पैसा, उधर मतलब पेट, पैसे पेट में बंधे हुए। पुराने जमाने में लोग पैसे पेट पे बांधते थे, पेट में पैसे बांधते थे। और तीसरा बोलता है कि फिर को मैं बोलूंगा, क्या बोलेगा, क्या करो इसको, वासुदेव, बांस लेके कूटो इसको, पूरा बांस का लकड़ा लेके इसका सर फोड़ दो। तो चौथे ने बोला हरिहर, लूट के भगा दो। तो उन्होंने नाम भगवान के रखे थे लेकिन काम चोरी का था। नारायण, एक बार आ रहा था सामने चोर, बोला नारायण, दूसरा कहता है दामोदर, बोला वासुदेव, बोला हरिहर। इतनी देर में बिजली गिरी ऊपर से, बिजली गिरी और ये चारों के ऊपर आके गिरी। ये चार मरने लगे तो यमदूत आए, उससे पहले विष्णु दूत आ गए, बोला इसको, ये चोर थे, बोला चोर तो थे लेकिन बोल क्या रहे थे मरने से पहले, नारायण दामोदर वासुदेव हरि हरिहर, इसलिए आप इसको नहीं ले जा सकते हो। तो नाम कैसे भी उल्टा सीधा लिया जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। तो ये भक्तों के नाम इतने बड़े, तो मांधाता राजा था मथुरा का, और उस वक्त में सौबरी नाम का ऋषि जमुना में जल के अंदर तपस्या कर रहा था। पानी के अंदर इसलिए तपस्या कर रहा था कि मेरे को बाहर दुनिया में देखूंगा तो मन बाहर चला जाएगा। इतनी योग शक्ति थी कि सांस को रोक के पानी में तपस्या कर रहा था। एक दिन आंख खोल के पानी के अंदर मछली और मच्छ को आपस में आलिंगन करते देखा तो मन में विवाह का विचार आ गया। वो तपस्या छोड़ के मांधाता के राज में आया, कहा महाराज मेरे को विवाह करना है। राजा ने कहा महाराज ये अंदर आप जाइए, जो कन्या आपको पसंद करे उससे विवाह कर लो। महाराजों को राजाओं के घर में मना नहीं होती थी। राजा ने कहा कि ये बूढ़ा है, कौन इससे शादी करेगा, अपने आप कोई नहीं करेगा, अब मैं इसको ना तो नहीं कह सकता, ऋषि है। वो समझा कि महाराज समझता है कि मैं बूढ़ा हूं इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। तपस्या ऐसी थी, एकदम नवयुवक हो गया, और महाराज की 50 कन्या थी, सब बोले हम इसी से शादी करेंगे, और 50 के साथ सौबरी जी ने शादी कर ली। ऐसा क्यों हो गया, सौबरी ने एक अपराध किया था। कौन सा अपराध किया था, गरुड़ को श्राप दिया था। गरुड़ एक बार जमुना के किनारे आया, एक मछली को पकड़ा, तो इसने कहा गरुड़ अभी कभी तुम अगर जमुना के किनारे आओगे तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, उसको दिया श्राप। अरे गरुड़ है तो भगवान विष्णु का वान, लेकिन खाता तो मांस ही है, गरुड़ का खाना तो मछली और मांस है। वो वैष्णव अपराध के कारण सोबरी की तपस्या में से विवाह किया। विवाह करने के बाद थोड़े समय के बाद विचार आया कि मैं कितनी तपस्या करने के लिए निकला था, अब क्या संसार में फंस गया, तो फिर उसके बाद वापस तपस्या करने चला गया। तो ये मांधाता महाराज के वर्णन आता है। और इसके बाद इस वंश के अंदर आगे चल के एक महाराज बाहुक हुए, और वो राजा तपस्या करने के लिए ऋषि के आश्रम में चले गए, और रानियां भी साथ में थी। तो महाराज का देहांत हो गया तो रानियां, जो मुख्य रानी थी वो सती होने के लिए आगे गई, तो ऋषि ने कहा आप गर्भवती हो और गर्भवती सती नहीं हो सकती, तो ये जो जीवित रह गई, तो बाकी रानियों ने कहा ये अगर कल बच्चे को जन्म देगी तो ये तो राजमाता हो जाएगी, हम तो राजा की रानियां, हमको तो कोई पूछेगा नहीं। उनके ईर्ष्या के कारण उस गर्भवती रानी को जहर दे दिया। लेकिन तपस्या करते हुए राजा का तपस्या का प्रभाव और उस रानी की राजा के प्रति जो श्रद्धा और पतिव्रता था, उसके कारण समय आने के ऊपर बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन बच्चा एक तरफ जहर पड़ा था, एक तरफ बच्चा पड़ा था, तो बच्चे का नाम हो गया सगर। स का अर्थ होता है साथ में, और गर कहते हैं विष को, विष के साथ जिसका जन्म हुआ। बच्चा मरा नहीं विष देने से, और विष के साथ बालक का जन्म हुआ, उसका नाम सगर हुआ। बड़ा हुआ तो सगर का एक बेटा हुआ अंशुमान, अंजस्मस। और ये तो ऐसा महात्मा था, कभी राज करना ही नहीं चाहता था। महाराज के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी करके कोई ले गया, तो उसकी दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र थे, वो घोड़ा ढूंढने गए, घोड़ा मिला नहीं। और देखा तो कपिल देव के आश्रम में गंगा सागर में घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने समझा कपिल देव ने घोड़ा चुराया है, और कपिल देव ध्यान में थे, वो कपिल देव की ओर दौड़े। कपिल देव ने आंख खोली, वो 60,000 भस्म हो गए। अब एक बड़ा बेटा तो महाराज का दूसरा अकेला था अंजस्मस, उसने कुछ किया नहीं। उसका पुत्र आगे हुआ अंशुमान, वो अपने दादा के घोड़े को ढूंढने गया। और वो जब पहुंचा गंगा सागर, तो घोड़ा देखा, ऋषि को प्रणाम करके कहते, महाराज आपके आश्रम में कौन घोड़ा बांध के गया हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे ताऊ इस घोड़े को ढूंढते हुए यहां आए थे, वो वापस नहीं लौटे हैं। तो महाराज कपिल देव कहते हैं, ये उनकी राख पड़ी है, वो अपने ही अपराध के कारण मेरी आंख खोलने से भस्म हो गए। आप अपना घोड़ा ले जाओ बेटा। बोला, महाराज मैं घोड़ा तो ले जाता हूं, लेकिन मेरे इन ताऊ का उद्धार कैसे होगा। बोला, बेटा अगर गंगा धरती के ऊपर आए तो तेरे ताऊ का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान घोड़ा वापस लाया, यज्ञ पूरा हुआ, अंशुमान अपने बेटे दिलीप को राज देके तपस्या करने चले गए। अंशुमान का जीवन पूरा हो गया। महाराज दिलीप उनकी दूसरी पीढ़ी में अपने बेटे भागीरथ को राज देके चले गए तपस्या करने, दूसरी पीढ़ी पूरी हो गई। तीसरी पीढ़ी में महाराज भागीरथ जहां आज गंगोत्री है वहां जाके बैठे, एक पत्थर के ऊपर तपस्या करने लगे। महाराज भागीरथ की ये तीसरी पीढ़ी है सगर की। महाराज सगर के तीन पीढ़ियों के तपस्या से गंगा धरती पे आई है। महाराज भागीरथ के पास गंगा जी प्रकट हो गई। देखो, एक गंगा तो ऐसे नदी पानी तरह बहता है, ये उसका आदि भौतिक रूप है। जब गंगा जी देवी का रूप धारण करती है तो मगरमच्छ के ऊपर चढ़ के आती है, बहुत सुंदर देवी है। वो देवी भीष्म पितामह की माता बनी, तो गंगा देवी तो उसका आदि देविक जो देवी का रूप है। ऐसे पृथ्वी जो है, ऐसे तो पत्थर पहाड़ दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी जब देवी का रूप धारण करती है तो गाय का रूप धारण करती है। जो सहनशीलता आदि भौतिक रूप पृथ्वी का है पहाड़ पत्थर नदियां, आदि देविक रूप पृथ्वी का है गाय, और आध्यात्मिक रूप में भूमि ये भगवान विष्णु की पत्नी है पृथ्वी, इसको भूदेवी बोलते हैं। लक्ष्मी को श्री देवी बोलते हैं और पृथ्वी को भूदेवी बोलते हैं, ये भगवान की पत्नी है। तो ये गंगा जी भी ऐसे ब्रह्म द्रव्य है, वो तो भगवत धाम से भगवान का चरण धो के नीचे आया है। गंगा जी देवी के रूप में प्रकट हुई। बोला, भागीरथ मैं आपके तीन पीढ़ियों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। पहले दिन आपको हमने बोला था, तीन पीढ़ियां परीक्षित महाराज की माताओं की, कुंती द्रौपदी उत्तरा, कृष्ण भक्ति को इतना प्रवीण किया कि भागवत का अवतार हुआ। तो भगवान के अवतार के लिए तीन पीढ़ियों का परिश्रम, ये भागवत का प्रकट्य हुआ है। ऐसे तीन पीढ़ियों की तपस्या से गंगा धरती पे आई। अब गंगा जी कहती है, मैं भागीरथ जी प्रसन्न हुई आओ तो सही, लेकिन मैं जब स्वर्ग से नीचे उतरूंगी तो मेरा वेग इतना तेज होगा मैं पाताल में चली जाऊंगा, आपका काम तो होगा नहीं। और दूसरा पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे, मैं कहां पवित्र हूं। तो भागीरथ ने कहा मां मैं दोनों का मां व्यवस्था करता हूं। उन्होंने तपस्या किया, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा गंगा को कहो कि जब उतरेगी तो मैं अपनी जटाओं में उसके वेग को धारण कर लूंगा। और जो साधु संत हिमालय में बैठे थे सबने कहा भागीरथ गंगा को आश्वासन दो, पापी जब पाप धो जाएंगे हम आपके किनारे पे जो भजन करेंगे और जब हम स्नान करेंगे आप पवित्र हो जाओगी। अब दोबारा गंगा का आह्वान हुआ। गंगा जी ने कहा कि अगर शंकर जी धारण करता है और ऋषि मेरे पाप धोएंगे तो मैं धरती पे आने को तैयार हूं। ऐसे गंगा जी स्वर्ग लोक से नीचे उतरी गंगा जी और शंकर जी ने अपने जटाओं में धारण कर लिया। आज शंकर जी का नाम हो गया गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले। और फिर वहां से नीचे जब गंगा उतरी है तो आगे भागीरथ का रथ है और पीछे गंगा चली है। और गंगा जब बंगाल के क्षेत्र में यहां से गई है तो ऋषि जानू बैठे थे, वो अपनी पूजा कर रहे थे। गंगा के प्रभाव के कारण उसकी पूजा की सामग्री चली गई, वो गंगा सब पी गए। और भागीरथ पीछे मुड़ के देखा, अरे तीन पीढ़ियों के परिश्रम से गंगा को धरती पे लाए ताऊ के उद्धार के लिए, अब तो गंगा पीछे आ नहीं रही है। जाके जानू ऋषि को प्रणाम किया, महाराज कृपा करके। तो जानू ने फिर वापस प्रकट की, इसलिए गंगा का नाम है जाह्नवी, जानू की पुत्री। भागीरथी गंगा को कहते हैं जब वो गंगोत्री से नीचे उतरती, और गंगा इसलिए कहती है जो बहती है उसको गंगा कहते हैं, और जानू इसलिए कहते हैं जानू ऋषि की। विष्णुपति कहते हैं भगवान के चरण को धो के निकलिए, और सुरसरी कहते हैं क्योंकि देवताओं के लोक से नीचे उतर आई। ऐसे गंगा जी के बहुत से नाम है, गंगा जी की अपनी प्रार्थना है। गंगा, गौ माता, ये सब तुलसी, इनके नजदीक जाने से बिना किसी प्रयास के भगवान की। तो गंगा जी को वापस प्रकट करके, यहाँ गंगा के प्रकट्य की कथा है, और गंगा के प्रकट्य की कथा के बाद अब इस कुल में आगे हरिश्चंद्र का वर्णन है। उसके बाद इस कुल के अंदर महाराज अज्ज और महाराज अज्ज के बेटे दशरथ और दशरथ के घर में फिर भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट्य है। तो यहाँ राम अवतार का तीन अध्यायों में श्रीमद् भागवत में वर्णन है। और सुखदेव महाराज कहते हैं कि आपने तो परीक्षित जी राम कथा बहुत सुनी है, इसलिए मैं संक्षेप में राम कथा बताता हूँ। तो राम कथा का तो विषय नहीं है, तो आज राम कथा को यहाँ सीताराम लक्ष्मण हनुमान को प्रणाम करके, और उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य केवल रावण को मारना नहीं था, लेकिन हम लोगों को शिक्षा देना था कि अगर जीवन में ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करना है तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए कहीं समुद्र पार जाना पड़े या रावण जैसे बड़े भारी राक्षस से लड़ना पड़े तो भी अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। ये रामचंद्र की पहली शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा है कि अगर आप में इतना सामर्थ्य नहीं है तो फिर अच्छा है साधु बन के हरि हरि जपते रहो और ये झंझट में दुनिया के पड़ो ही मत। ये पांचवें स्कंद भागवत में किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी ऐसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान के अवतार का ये उद्देश्य है। भगवान जो ऐसे मानव शरीर जैसा लेके धरती पे आए थे, क्योंकि रावण को केवल मानव ही मार सकता था और कोई नहीं मार सकता था, ऐसा उसने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। तो भगवान, वहां वर्णन ऐसे आता है कि महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में सारे देवता इकट्ठे हो गए और ब्रह्मा जी को घेर के कहते कि इतने सारे वरदान दे दिए हैं आपने रावण को, कुंभकर्ण को, सुरपंखा को, सारे पृथ्वी के ऊपर क्या त्रिलोकी में इनमें हाहाकार मचा दिया है, अब क्या करें। तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए। सबने कहा भगवान विष्णु को आप हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं आप अपने यज्ञ का भाग लेके चले जाओ, मैं इस यज्ञ में कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं अपने आप को इस यज्ञ में देने आया हूं। अब इस यज्ञ के अंदर जो यज्ञ पुरुष निकलेगा उसके हाथ में जो सोने का कलश होगा और उसमें जो खीर होगी उसमें प्रवेश होके मैं दशरथ के घर में चार राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होऊंगा। ये चतुर्व्यूह मेरा, वसुदेव भगवान राम बने, संकृष्ण लक्ष्मण बने, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भरत और शत्रुघ्न बने, ये चारों विष्णु तत्व है। तो ऐसे भगवान के प्रकट्य, फिर भगवान की शिक्षा वशिष्ठ जी के आश्रम में, फिर परीक्षा, शिक्षा के बाद परीक्षा विश्वामित्र के साथ जाकर, और तब सब अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र ने दिया, और शिक्षा के बाद परीक्षा, और परीक्षा के बाद परिणय सीता के साथ विवाह का प्रसंग आता है जनकपुर में जाके, और शंकर जी के धनुष के ऊपर प्रत्यंजय चढ़ाते हैं, फिर परशुराम से उनकी शक्ति को ले लेते हैं, और फिर राम जी वापस विवाह करके अयोध्या आते हैं। और अयोध्या में दशरथ ने राजतिलक की तैयारी की, और केकई ने 14 साल का वनवास दे दिया। वो वनवास में भगवान रामचंद्र ने ऋषियों को दर्शन दिया, असुरों का संहार किया। ये भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य होता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। तो ये भगवान रामचंद्र ने असुरों का संहार किया और ऋषियों को दर्शन देके प्रसन्न किया। और फिर सीता के हरण की कथा है, जो सीता असली का हरण तो नहीं कर सकता था रावण, वो छाया सीता को ले गया था। असली सीता अग्निदेव के पास धरोहर थी, और फिर सुग्रीव के साथ मैत्री और हनुमान साम का मिलना, और हनुमान का सीता को खोजना, और उसके बाद सेतु बंधना, वानरों के साथ सेतु तैयार करना, और फिर युद्ध कांड में भगवान श्री रामचंद्र का अपने दोनों पार्षद जय और विजय, जो आज रावण और कुंभकर्ण बने थे, उनका उद्धार करना, और सीता की अग्नि परीक्षा करके छाया सीता रह गई, और अग्नि से असली सीता प्रकट होकर राम जी के वाम भाग में आके खड़ी हो गई, और फिर वापस राज तिलक इनका होता है। तो ऐसे राम कथा अपने आप में तो कोई 9 दिन तक पूरी होती है। पुराने जमाने में, पुराने भारतवर्ष में दशहरे से पहले 9 दिन राम कथा होती थी, 10वें दिन पे दशहरा होता था, और दोबारा जो है रामनवमी के दिन राम जी का जन्म होता था, और उससे आगे 8 दिन कथा होती थी। ये राम कथाएं, ये रामलीला ग्राउंड बने हुए हैं पूरे भारत में, दिखता है अब न रामलीला होती है न राम कथा होती है। अब लोगों ने कुछ परिवर्तन करके धर्म की मर्यादाओं को दूसरे तरीके से अपने भावों के अनुसार लेके गए हैं, लेकिन जो परंपराएं थी वो लुप्त हो गई। नाम रामलीला ग्राउंड है, लेकिन रामलीला उधर होती नहीं है। बाकी एक रावण को बना के और किसी और उससे बड़े रावण को लाके कहते हैं इसको तीर मारो, हाँ, कोई राम जी तो नहीं होता है जो रावण को तीर मारे, वो कोई नेता वेता पकड़ के लाते हैं कि इसको तीर मारो। तो ये तो अपराध का काम हो रहा है, इसलिए रामलीला ग्राउंड नाम कोई मतलब नहीं रह गया। हरे कृष्ण। तो भगवान राम के अवतार के बाद कुश के वंश का वर्णन है। ऐसा में देखा जाए तो चारों भाइयों ने राज तो किया नहीं, हर एक भाई के 2 बेटे थे। भरत के दोनों बेटों को तक्षशिला का राज दिया गया, तक्षशिला के कई देश था उससे आगे वो वाला, और लाहौर लव को दिया गया, ये पंजाब लव की राजधानी हुआ करती थी, और ऐसे लव के ही वंश में आगे गुरु गोविंद सिंह, ये जो वंश आता है ये लव के वंश में आते हैं आके, जो गुरुजनों का वंश है कि लव के वंश से आगे आता है। इसके बाद एक और महाराज का वर्णन आता है, उसको कहते हैं निमी महाराज का वंश। निमी महाराज के वंश का वर्णन यह कि निमी महाराज सूर्य वंश का एक राजा है, जिसने नव योगेंद्रों से उपदेश लिया है, जो उपदेश 11वें स्कंद में आता है। तो वशिष्ठ जी सूर्य वंश के गुरु हैं। वशिष्ठ जी, हरे कृष्ण, वशिष्ठ जी एक बार निमी महाराज ने कहा जल्दी यज्ञ कराइए, अच्छा मन में विचार आया है तो धर्म का काम कर लेना चाहिए, धर्म के काम को टालना नहीं चाहिए आज से कल के ऊपर। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे अभी देवताओं ने बुलाया है, मैं देवताओं का यज्ञ करके वापस आऊंगा, फिर आपका कराऊंगा। वशिष्ठ जी देवलोक चले गए, लेकिन निमी ने कहा जीवन के ऊपर भरोसा नहीं है, आज मेरे अंदर अच्छा धर्म की भावना है, मैं चाहता हूं कि आज कुछ मुझे सेवा करनी चाहिए, और मैंने नहीं की और कल मैं मर गया तो। उन्होंने कुछ और ब्राह्मणों को पुरोहित बनाया और यज्ञ कराया। वशिष्ठ जी लौट के देखें तो ये तो ब्राह्मण यज्ञ की सामग्री लेके जा रहे हैं, दक्षिणा ले जा रहे हैं। बोला कहां से आ रहे हो? बोला नमी महाराज ने यज्ञ कराया था। वशिष्ठ ने कहा तुम हमारे यजमान हो के किसी और से यज्ञ कराया, मैं तुम्हें शराब देता हूं, तेरा शरीर छूट जाए। और नमी महाराज ने कहा गुरुदेव आपको प्रणाम है, लेकिन आप देवताओं के पास क्या दक्षिणा ज्यादा मिलती है, इसलिए गए थे? हमारे पूर्वज आपके शिष्य हैं, आप तो सूर्य वंश के गुरु, हमको यज्ञ क्यों नहीं कराया? हम शराब देते आपका भी शरीर छूट जाए। और एक दूसरे के शराब से वशिष्ठ जी का शरीर छूट गया। दोबारा वशिष्ठ जी प्रकट हुए वरुण के और दूसरे देवता के द्वारा, और यहां नमी महाराज ने कहा मुझे शरीर नहीं चाहिए। नमी महाराज के शरीर को रख दिया गया। देवताओं ने कहा नमी महाराज नहीं नहीं आप वापस शरीर में आओ। बोला मैं शरीर में नहीं रहना चाहता। तो नमी महाराज का नाम पड़ गया विदेह राज, कोई देह में नहीं रहना चाहता। तो उनके शरीर का मंथन किया और उस मंथन से जो प्रकट हुआ उसका नाम हुआ जनक। और क्योंकि वो जनक का प्रकट्य मंथन से हुआ तो उसने जो राजधानी बनाई उसका नाम हुआ मिथिला। तो जनक, विदेह राज और मिथिला, ये तीन पहले नाम पड़े निमी महाराज के। इस निमी महाराज के वंश में आगे सीता माता का पिता महाराज जनक 22वीं पीढ़ी में है। और इस जनक का नाम, जो सीता माता के पिता हुए, उनका नाम है क्षीरध्वज। ये क्षीरध्वज जनक भी इसको कहते हैं, विदेह राज भी कहते हैं, इसलिए सीता का नाम जानकी है। इसकी राजधानी को मिथिला। तो ये नाम वहां से आ रहा है, महाराज निमी से। और ये रामायण में वर्णन आता है, जब विवाह का प्रसंग आता है तो निमी महाराज अपने वंश का वर्णन करते हैं। और वशिष्ठ जी दशरथ महाराज के इक्ष्वाकु के वंश से आ रहे हैं, ऐसे वर्णन करते हैं कि इक्ष्वाकु के वंश से रामचंद्र आ रहा है और निमी के वंश से जनक आ रहा है। अब यहां सूर्य वंश की कथा पूरी होती है, अब चंद्र वंश की कथा होती है। और इस कथा में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होना है, उससे पहले परशुराम प्रकट होते हैं। तो सूर्य वंश का एक राजा आज भी कल्प ग्राम में समाधि में बैठा है, और जब दोबारा सत्ययुग शुरू होगा तब सूर्य वंश का राजा फिर सूर्य वंश को शुरू करेगा। ऐसे एक चंद्र वंश का राजा भी आज समाधि में बैठा हुआ है, और समय आने के ऊपर चंद्रवंश दोबारा शुरू होगा। तो चंद्रवंश किससे शुरू होगा? चंद्र से, भाई चंद्र से। और चंद्र किसका पुत्र है? आज आपको अभी बताया, चंद्र किसका पुत्र है? चंद्रमा अत्रि और अनुसूया का। और अत्रि किसका पुत्र है? ब्रह्मा जी का। ये सप्तऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा का अत्रि, अत्रि का चंद्रमा, और चंद्रमा का पुत्र है बुद्ध। और बुद्ध ने विवाह किया सुदामनियों से, गंधर्व विवाह किया, और उसका जो बच्चा हुआ उसका नाम हुआ पुरुरवा। और पुरुरवा से सूर्य, अब चंद्र वंश शुरू होगा। चंद्रमा, बुद्ध, पुरुरवा। पुरुरवा एक बार चला गया स्वर्ग में, स्वर्ग के अंदर सब देवताओं से उसको मिलाया, काम देवता से उसने घृणा की। काम देवता ने कहा तुम्हारे ऊपर मैं बहुत आक्रमण करूंगा। पुरुरवा धरती के ऊपर आया, वापस पुरुरवा धरती के ऊपर आया। और एक अप्सरा, कौन सी अप्सरा? उर्वशी। अब एक ध्यान दीजिए, उर्वशी अप्सरा स्वर्ग की नहीं है। आपको मालूम है उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति कहां से होती है? भगवान नर नारायण की जांग से। कल आपको बताया था भारत वर्ष का आराध्य देव नर नारायण है, जो मद्रिक आश्रम में रहते हैं, उनको बद्री नारायण कहते हैं। बद्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, क्योंकि नारायण तपस्या करने के लिए आए तो लक्ष्मी बेरी का पेड़ बनके उनको छाया देके फल देने लगी। तो भगवान ने लक्ष्मी को कहा कि जैसे लक्ष्मी नारायण कहेंगे ऐसे अब मेरे को बद्री नारायण कहेंगे। तो भगवान बद्री नारायण की तपस्या को देखे इंद्र ने कामदेव को भेजा कि इसको जाकर विचलित करो। कामदेव पांच पुष्प बाण मारने लगा तो उस वक्त भगवान नारायण मुस्कुरा के ऐसे जांग को मार के उर्वशी को प्रकट किया, बोला ये ले जाके इंद्र को हमारी तरफ से एक उपहार दे देना, गिफ्ट देना। ये बात कथा करने की जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि जहां भगवान श्री कृष्ण का अवतार होना है वो वंश संसार के किसी स्त्री पुरुष से पैदा नहीं हुआ है, भगवान नारायण की जांग से हुआ है। स्वयं नारायण ने अपने शरीर से उर्वशी को प्रकट करके दिया। इस उर्वशी को श्राप दिया गया, स्वर्ग लोक में जाओ, तुम्हारी मानवी वासना है, तुम मानव लोक में जाओ। तो नारद ने कहा इस वक्त बहुत सुंदर पुरुर्वा बुद्ध का पुत्र है, उससे विवाह कर लो। तो उर्वशी ने पुरुर्वा के साथ विवाह किया, लेकिन उर्वशी ने तीन शर्त रखे। पहला बोला मैं केवल घी खाऊंगी, इससे पता लगता है कि स्वर्ग में लोग सिर्फ गाय का घी खाते हैं, और हमारे भी बड़े बुजुर्ग केवल गाय का घी खाते थे और घी ही खाते थे। जब से तेल आया तब से सबका तेल निकल गया, तेल ने सब गड़बड़ कर दी। पहले घी खाते थे क्योंकि पहले हमारे लोग देवताओं जैसे हुआ करते थे। और दूसरा उसने कहा कि ये मैं चार भेड़ के बच्चे लाई है, इसकी आपको रक्षा करनी है। और तीसरा मैं कभी भी आपको प्रकाश में निर्वस्त्र न देखूं, और देखा तो मैं चली जाऊंगी। बड़ा प्रेम था दोनों के बीच में, लेकिन इंद्र ने कहा उर्वशी कहां चली गई? बोला वो तो धरती के ऊपर पुरुवरा से विवाह करके बैठी है। बोला उसको वापस लाओ। गंधर्व आए, चार बच्चों को चुराया भेड़ के। तो उर्वशी ने कहा तुम राजा हो के चार बच्चे भेड़ के नहीं बचा सकते, स्त्री की तरह यहां चूड़िया पहन के सोए हो। तो वो जल्दी उठा, वस्त्र पहना नहीं, उर्वशी ने कहा मैं जा रही हूं, उर्वशी छोड़ के चली गई। अब पुरुवरा को उर्वशी से इतना प्रेम था, वो परेशान होकर घूमता हुआ कुरुक्षेत्र में उसको उर्वशी मिल गई। तो उर्वशी ने को कहा नहीं मुझे, मैं आपसे प्रेम करता हूं। तो उर्वशी ने कहा साल में एक बार मिलेंगे। फिर छह पुत्र उर्वशी से पुरुवरा को हुए, उनमें से एक वंश के अंदर आगे जानू महाराज हुए, उस जानू महाराज के वंश में आगे गाधी महाराज हुए, जिनके घर में आगे चल के गाधी महाराज के घर में परशुराम का जन्म होता। तो भगवान परशुराम की कथा ऐसे आती है। कथा बहुत लंबी है, समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन परशुराम की कथा भी अद्भुत है। गाधी महाराज की सत्यवती बेटी थी, उसका विवाह रीचक ऋषि से हुआ। तो एक दिन रीचक ऋषि, पहले तो राजा था, रीचक ऋषि को विवाह के लिए बोला 100 घोड़े सारे सफेद हो, एक कान काला हो, ऐसे लाके दो। अब ऐसे घोड़े कहीं मिलेंगे नहीं तो महाराज आएगा नहीं वापस, तो लड़की का विवाह होगा नहीं। लेकिन वरुण देव ने ऐसे 100 घोड़े दे दिए, तो विवाह हो गया। तो एक दिन सास मैंने गांधी की पत्नी गई अपनी बेटी से मिलने और कहा कि आप मेरी बेटी को भी पुत्र संतान होना चाहिए, और मैं भी अभी तक पुत्र संतान नहीं है महाराज रीचक, हमको कोई चारू बना के दो। चारू का मतलब कोई पढ़ के खीर बना के दो मंत्र। तो महाराज रीचक ने एक मंत्र का पढ़ के बनाया गाधी की पत्नी के लिए, और एक बनाया अपनी पत्नी के लिए। वो गया स्नान करने और सास ने समझा के अपनी पत्नी के लिए शायद अच्छी बनाई हो, तो बेटी से बदल दिया, बदल खीर बदल दिया। वापस आके ऋषि बोलता है कि आपने बड़ा अपराध कर दिया, आपके घर में क्षत्रिय पैदा हुए ऐसा मैंने खीर बनाया था, मेरे घर में ब्राह्मण हो, अब उल्टा हो गया, मेरे घर में होगा ब्राह्मण और क्षत्रिय और आपके घर में होगा ब्राह्मण। तो आगे चल के रीचक के घर में हुआ विश्वामित्र, वो क्षत्रिय जैसा हो गया, वो जाके उसको बाद में ब्रह्म ऋषि बनना पड़ा। और गाधी के घर में आ गया परशुराम, जो ब्राह्मण के घर में पैदा किया और परसा हाथ में उठाया और क्षत्रियों का संहार करने लगा। तो परशुराम का फिर जमदग्नि पिता हुआ, परशुराम के पिता फिर हुए जमदग्नि, और उनकी माता हुई रेणुका। तो एक दिन सहस्र बाहु अर्जुन, जिसकी हजार बाजे थी, जो महेशमति का राजा था, जिसने रावण को एक बार हराया था, उस राजा परशुराम के पिताजी के घर पे आया। ऋषि के घर में गाय थी, उसने बड़ी सेवा की, वो गाय को ले जाने लगा। पिताजी ने कहा कि नहीं ले जाओ हमारी, तो परशुराम ने जाके उसकी सब बाजू काट दी, उसको मार दिया, उसके पुत्रों को मार दिया। और फिर पिताजी ने कहा, बेटा इतना सारा तुमने नर संहार किया है, अब जाओ तीर्थ यात्राएं करके आओ। साल एक तीर्थ यात्रा की। एक दिन परशुराम लकड़ी लेने गया तो एक बचा हुआ पुत्र सहस्र बाहु का आया, परशुराम के पिता का गर्दन काटा और गर्दन ही लेके चला गया। मां रेणु का चिल्लाई, हे राम हे परशुराम। परशुराम ने कहा, मां मैं आप पिता का गर्दन लाऊंगा, फिर आप तर्पण करना। और गया, उस सबको मार के पिता का लाया, उस गर्दन तो लाया। 21 बार पूरे भारत वर्ष में क्षत्रिय जो सर उठाए उसका सर काट दे। तो परशुराम भगवान का अंश अवतार है, लेकिन रामचंद्र से जब उनका मिलन हुआ तब उन्होंने कहा, अब रामचंद्र मेरा अंश में आप में समाता हूं, अब जाके मैं महेंद्र पर्वत पे तपस्या करता हूं। तो यह परशुराम के अवतार का वर्णन है। और परशुराम अवतार के बाद आगे इस वंश में महाराज ययाति होते हैं। और ययाति महाराज एक बार घोड़े के ऊपर चढ़ के शिकार करके लौट रहे थे, तो कुएं के अंदर पानी पीने के लिए गए, तो अंदर से एक स्त्री ने कहा, महाराज मेरे को बाहर निकालो। और ये स्त्री जो थी, ये शुकर आचार्य की बेटी थी। क्या नाम है शुकर आचार्य की बेटी का? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कथा ऐसे आती है कि महाराज की बेटी समृष्टा और उसकी सहेली थी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और समृष्टा थी, दोनों मित्र, नहा रही थी दोनों। अचानक किसी के आने के ऊपर कपड़े बदली हो गए एक दूसरे के, तो राजा की पुत्री कहती है, तुम ब्राह्मण लोग हमारे दान के ऊपर पलते हो, तुम हमारे कपड़े पहनने की ताकत कैसे रखते हो? और फिर देवयानी बोलती है, आप राजाओं को जब हम राज तिलक करते हैं तब राज करते हो, आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीते हो, आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो? और राजा की पुत्री ने उसके सारे कपड़े उतारे और कुएं में फेंक दिया और वो समृष्ट घर चली गई। अब ये देवयानी कुएं में पड़ी थी, महाराज जब आए ययाति, तो ययाति महाराज को पानी के लिए तो हाथ दे के ययाति महाराज ने उसको निकाला बाहर। पहले कपड़ा फेंका, उसने कपड़ा अंग ढक लिया। फिर देवयानी कहती है, महाराज बृहस्पति के बेटे कच्च ने मेरे को शराप दिया है कि ब्राह्मण के घर में मेरा विवाह नहीं होगा, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब आप मुझसे विवाह कर लो। क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण से विवाह करे इसको विलोम विवाह कहते हैं, विलोम का मतलब उल्टा है, ऐसे होता नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह करे ये हो सकता है, लेकिन विलोम विवाह नहीं हो सकता। लेकिन इसने कहा, और कोई चारा नहीं है, आपने हाथ पकड़ लिया है तो। और फिर देवयानी के साथ महाराज ययाति ने विवाह किया। देवयानी अपने पिता को जाके कहा, शुक्राचार्य को मेरे को राजा की बेटी ऐसे कुएं में फेंक के आई थी। शुक्राचार्य क्रोधी होके वो महाराज विश्वपर्वा के पास चले गए। महाराज विश्वपर्वा का, गुरुजी मुझे मालूम नहीं, बच्चियां दोनों सहेलियां है, आपकी बेटी जो कहे दंड दे हमको स्वीकार है। उसने बोला, दंड ये है, मेरी शादी होगी ययाति के साथ और आपकी बेटी राजकुमारी मेरी दासी होके जाएगी। तो राजा की बेटी वो जो समृष्ट है वो दासी होके चलेगी। और शुक्राचार्य ने कहा, इस दासी से तुम पुत्र की उत्पत्ति मत करना। आगे चल के देवयानी से तीन पुत्र हुए। लेकिन एक दिन समृष्ट ने कहा, महाराज मैं आपके घर में आई हूं, दासी को पुत्र उत्पन्न करने का तो अधिकार है। और उस समृष्टा से भी पुत्र उत्पन्न हुए। तो फिर शुक्राचार्य ने क्रोध कर दिया, बोला तुम बूढ़े हो जाओ। बेचारा यजाति बूढ़ा हो गया। बोला महाराज गुरुदेव मेरे सुसर अभी तक मेरा भोग पूरा नहीं हुआ है। बोला ठीक है, तुम्हारा बेटा कोई जवानी देगा तो फिर तुम वापस जवान हो जाओगे। अपने बेटों सबको मांगा, सबसे बड़ा यदु था। यदु ने कहा मैं तो नहीं दूंगा जवानी, क्योंकि मेरे कुल में आगे भगवान का अवतार होने वाला है, मैं उसमें देर नहीं करना चाहता हूँ, रुकावट नहीं डालना चाहूँ। सबसे छोटे पुरु ने कहा पिताजी मैं मेरी जवानी देता हूँ। पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता ययाति को दी। थोड़े समय के बाद ययाति को समझ में आया। ययाति ने देवयानी को कहा कि देखो संसार में एक कथा पूरी बताई, अपनी ही जीवनी बताई कि एक बकरे ने एक बकरी को कुएं से निकाला, फिर दूसरी बकरी से प्रेम हो गया, फिर घर में झगड़ा हो गया, अब चलो भगवान का भजन करते। दोनों भजन करने चले गए और यहां आगे पुरु को राजा बना के गए। राजा किसको बनाया, जिसने जवानी दी थी उसको वापस जवानी लौटा दी और पुरु राजा हो गया। तो पुरु के वंश में आगे में कुरु हुआ और कुरु के वंश में आगे चल के दुष्यंत, इस वंश में आगे महाराज दुष्यंत आएंगे, जो महाराज जिसका बेटा भरत होगा, और इस महाराज भरत के वंश में आगे जाके महाराज शांतिनु होंगे, जिसके घर में भीष्म पितामह होगा, और फिर इस घर में पांडु धृतराष्ट्र और विदुर होगा, और फिर पांडु के घर में पांच पांडव होंगे। ये वंश हो गया भरत का। अब दूसरे तरफ यदु का वंश चला, तो यदु का वंश कैसे चला है उसका वर्णन में भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य आएगा। तो ये आगे इन वंशों का वर्णन है। ययाति के बाद में आता है पुरु का वंश, और उसके बाद महाराज भरत का वंश और अजमीड़ का वंश। ये अजमीड़ वाली, अब ऐसे लिखा है कि इस यदु वंश में आगे एक महाराज अजमीर का जो वंश है, इस वंश में एक महाराज पर्जन्य देवमीर का, ये वंश में एक क्षत्रिय से विवाह किया, उससे वसुदेव का जन्म हुआ, और एक वैश्य से विवाह किया जिससे पर्जन्य हुआ, और पर्जन्य के घर में पांच पुत्र पैदा हुए, उसमें बीच वाला नंद था, बड़ा उपनंद नंदन, ये नीचे ये दो भाई छोटे दो बड़े और एक नंद। अब कथा यहां आती है कि जो वसुदेव इस वंश में आगे यदु वंश में वसुदेव के विवाह का वर्णन आता है कि उनका विवाह महाराज उग्रसेन के भाई देवभाग की लड़की देवकी से होने जा रहा है। और यहां ये बता दिया उस देवकी के सातवें गर्भ में बलराम जी आए, और फिर कहा कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र भी हुए, और ऐसे समय आने के ऊपर देवकी और वसुदेव के यहां भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ। यहां नवा अध्याय पूरा होता है, तो दसवें नवा स्कंद पूरा होता है, नाम लेकर तीन चार श्लोकों में दसवें स्कंद में एकदम महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपने तो सूर्य चंद्र वंश का बहुत विस्तार से वर्णन कर दिया, लेकिन हमारे अपने सहोदर भगवान श्री कृष्ण जो हमारे दादा अर्जुन के मित्र थे, सखा थे, उसके विषय में और कुछ मुझे सुनने की इच्छा है, आप उसको और सुनाइए, मुझे आप जैसा सुनाने वाला मिले तो फिर भगवान की कथा अमृत वाली है, भव रोग को नाश कर देती है, मुझे तो आनंद आ रहा है, आप इस कथा को चालू रखें। तो उस वक्त सुखदेव महाराज कहते हैं वासुदेव कथा पुनाति त्रियम, अरे महाराज आप भगवान की कथा सुनना चाहते हो, भगवान की कथा सुनना तीन आदमी को पवित्र कर देती है, श्रोत्रम वक्तारम जो बोलता है उसको, जो सुनता है उसको, जो आयोजन करता है या पूछता है उसको, और आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। थोड़ी परीक्षा लेने के लिए सुखदेव महाराज कहते हैं आज पांचवा दिन है, चार दिन पूरे हो रहे हैं महाराज, जलपान कर लो, थोड़ा थक गए होंगे, फिर कथा सुनाते हैं। परीक्षित महाराज कहता है एक दिन प्यास लगी थी, ऋषि का अपमान हो गया, तब से मैंने जलपान नहीं किया है, अब आपके मुख से ये कथा का अमृत की धारा बह रही है, बस कथा को चलने दीजिए, मुझे कुछ पीना नहीं है। और महाराज इतने प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता में सुखदेव महाराज ने बगैर भूमिका के बोला कि वसुदेव का विवाह जब देवकी के साथ हुआ तो बहुत बड़े जहेज के साथ उग्रसेन का बेटा कंस उनको विदाई के समय घर छोड़ने के लिए रथ का सारथी बना। ये पुरानी परंपरा होती थी, कन्या जब विवाह करके अपने माता पिता के घर से जाती थी तो भाई साथ जाता था, क्योंकि अब जिस दूसरे घर में जाता है वहां किसी को जानती नहीं है, तो भाई एक साथ जाता था। ये पुरानी परंपराएं थी, अब तो किसी को किसी का पता नहीं है, लेकिन ऐसे पुराने जमाने में हमारे जीवन में हमने देखा है विवाह के समय भाई जरूर साथ जाता था और फिर वापस लेके आता था एक बार, उसके बाद जब भी वापस जाए तो ले जाए, लेकिन एक बार वापस भाई जाता था लेके आता था बहन को। लेकिन यहाँ कथा को थोड़ा सा और समझने के लिए, कंस था तो चाचा का लड़का भाई, लेकिन उग्रसेन का बेटा कंस है नहीं, कंस है काल नैमी राक्षस। और काल नैमी राक्षस उग्रसेन की पत्नी का नाम है पद्मावती, जो अवंती का नगरी अवना विद्रभ देश की थी। विद्रभ देश का मतलब है अमरावती की, महाराष्ट्र में। वहां अपने मां के घर में गई हुई थी मायके में, वहां काल नैमी राक्षस उग्रसेन के रूप में आया और ये कंस काल नैमी राक्षस है। ये उस वक्त भाई बन के और घर ले जा रहा था। ये कथा सुखदेव महाराज ऐसे शुरू कर रहे हैं और भूमिका इसकी क्या है? भूमिका ये है कि पृथ्वी के ऊपर आतिथ्य राजा इतने बढ़ गए, राजा के नाम के ऊपर भार इतना हो गया कि पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी को साथ लेकर, शंकर जी को, नारद को साथ लेकर खीर सागर के किनारे के ऊपर प्रार्थना करने गई। तो धरती के ऊपर भार किस चीज का बढ़ता है? जब लोग पाप करते हैं, वचन पालन नहीं करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो धरती के ऊपर भार पड़ता है और धरती कहती है मैं झूठे का भार नहीं उठा सकती। और ये असुर उस वक्त में जो कंस के सारे साथी थे ये असुर थे। तो पृथ्वी भगवान की पत्नी है, ब्रह्मा जी भगवान का बेटा है, उसको साथ लेकर गई है और खीर सागर के ऊपर जाके प्रार्थना की। तो भगवान को देखा नहीं है लेकिन पुरुष सुख से प्रार्थना करते, भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में कहा ब्रह्मा जी मैं पृथ्वी के दुख को जानता हूं। वो पति कैसा जो अपनी पत्नी के दुख को नहीं जाने? मैं जानता हूं पृथ्वी का क्या दुख है। अब ब्रह्मा जी सब देवताओं को कहो कि आप, मैं तो वसुदेव और देवकी के यहां प्रकट होने वाला हूं यदुकुंड में, यदुकुल में, और आप सब देवता श्री के प्रिय करने के लिए, इसका मतलब मेरे साथ राधा रानी आएगी, आप अपनी स्त्रियों के साथ यदुवंश, मधुवंश, भोजवंश और इन वंशों में आप देवता भी प्रकट हो जाओ। तो ऐसे ब्रह्मा जी को भगवान ने आश्वासन दिलाया। और दूसरे तरफ कंस देवकी का रथ लेके जा रहा है और बड़े प्रेम से छोड़ने जा रहा है। आकाशवाणी ने बताया मूर्ख कंस इसका आठवां संतान तेरा काल, ये भी नहीं बताया कि लड़की या लड़का। लेकिन असुर उस वक्त तक अच्छा होता है जब तक उसके इंटरेस्ट के ऊपर कोई संकट नहीं आता है। अब जब उसको पता लगा कि मुझे इसका बेटा मारेगा, वो बहन वाला प्रेम पता नहीं कहां चला गया, देवकी के बालों से पकड़ के तलवार निकाल के गर्दन काटने को तैयार हो गया। लेकिन देवकी ने यह नहीं कहा भैया मारो मत, नहीं, पति की ओर देख के कहा मुझे बचाओ, शांत खड़ी थी। जो इतनी शांत बुद्धि वाली है वो भगवान की माता बनने की अधिकारिणी होती है। भगवान के ऊपर भरोसा था, न चिल्लाया न रोया। लेकिन वसुदेव ने कहा ये मेरा धर्म है, पत्नी का रक्षा करना मेरा धर्म है। कहा भोजराज, हे भोज वंश के कंस, ये आपकी बहन है, मंगल कार्य, मंगल सूत्र, अब इस समय आप इसकी हत्या का सोचते हैं, आपका बड़ी बदनामी होगी और आप कितना प्रेम से छोड़ने जा रहे हो, देखा नहीं समझ रहा है। बोला स्त्री की हत्या करना, अबला की हत्या करना बड़ा पाप लगेगा, डर दिखाया, नहीं माने। तब वसुदेव ने सोचा शाम दाम दंड भेद जो भी नीति है, इस वक्त जब प्राण संकट में है तो जान बचा लेना चाहिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तब वसुदेव ने निर्णय लिया कि इस वक्त वह देवकी को बचाना चाहिए, और उन्होंने एक श्लोक बोल के कहा, कंस मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं, इस देवकी से तो आपको खतरा है नहीं, खतरा है इसकी संतान से, तो इसकी सारी संतानें मैं आपको लाके दूंगा, उसको छोड़ के जिससे आपको भय। कैसे संस्कृत में बोला है वसुदेव ने, उसका अर्थ ये निकलता है सारे संतान दे दूंगा लेकिन जिससे आपको भय है वो नहीं दूंगा। भगवान क्यों वसुदेव के घर में प्रकट होंगे अगर वो अपने बेटे को क्रूर कंस के हाथ में दे के आएगा, क्यों प्रकट होंगे? तो वसुदेव ने बड़ी सावधानी से शब्द कहे, और कंस को वसुदेव के वचन के ऊपर विश्वास था, और उसने कहा ठीक है ले जाओ इसको। और उसके बाद कंस तो छोड़ के चला गया, वो अपने घर चले गए। साल पूरा हुआ, एक बच्चा हुआ पहला देवकी को, वसुदेव अपने वचन को निभाने के लेके कंस के हाथ में दिया। कंस ने बच्चे को देखा, बोला ये क्या करेगा मेरा आठवां बच्चा, मुझे तो खतरा आठवें बच्चे से, ले जाओ इसको। वसुदेव ने बोले कंस इतना दयालु कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, कहता है ले जाओ तो ले जाते। वो ले जाने लगा तब तक नारद आ गया। नारद ने कहा हे भोजराज कंस, मैं स्वर्ग से आ रहा था और मैंने देखा कि रास्ते के अंदर सारे देवता अपनी पत्नियों के साथ यदुवंश में, भोज अंधक वंश में आपके विपरीत षड्यंत्र बना के और प्रकट हो रहे हैं। आपने वसुदेव और देवकी के बच्चे को वापस क्यों कर दिया? कंस ने बोला आठवें से भय है ना। बोला विष्णु बहुत चालाक है, आठ का कैसे पता लगेगा, ये देखो ये मेरी चार आठ उंगलियां, गिनती करके दिखाओ, एक कमल का दल दिखा दिया, बोला पंखड़ी की गिनती करो, बोला एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, बोला अभी इधर से गिनती करो तो आठवां पहला हो गया कि नहीं हो गया? अब आठवां पहला हो जाए तो कंस का माथा घूम गया, कहा कि लेके आओ वसुदेव और देवकी को, जेल में डाल दो, और बच्चा पकड़ का पत्थर के ऊपर मार दिया। तो क्या नारद बच्चे मराने के लिए आया था? ऐसा नारद ने क्यों किया? इसका नारद ने इसलिए ऐसा किया कि एक तो भगवान के अवतार में देर नहीं होना चाहिए, कंस इतना दयालु हो जाएगा भगवान के आने में देर होगी, लेकिन यह भी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नारद जानता था कि देवकी के पहले छह बच्चे जो होने वाले हैं, इनको शराप है कि इनका बाप इनको मारेगा, और ये छह बच्चे इसी काल नेमी कंस के हैं और इसी के हाथ मारे जाएंगे। तो जानता था नारद के ये काम इसी के हाथों से होना है। और ये छह बच्चे कौन थे, इसको षड गर्भ बोलते हैं। ऐसे छह बच्चे एक एक करके देवकी के कंस ने मारे। ये छह बच्चे कौन थे और इसके पीछे शिक्षा क्या है? मरीचि नाम का एक ऋषि है, उसके छह बच्चे थे ये। और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हुए जब वाक नाम की अपनी कन्या को प्रकट किया, तो अपनी कन्या के पीछे काम भाव से ब्रह्मा जी भाग रहे थे, तो ये छह हंस रहे थे, तो इनको कहा तुम असुर बन जाओ। चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दी है कि बड़े आदमी का आपको समझ में नहीं आए क्या कर रहा है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत संकट होता है, हमें क्या पता ये महात्मा क्या कर रहा है। एक महात्मा को किसी ने कहा कि महाराज जो आता है उसको गालियां क्यों देते हैं आप, झगड़ा क्यों करते हैं? बोला आप घर में बहुत तुलसी का पौधा लगाते हो, फूल लगाते हो, कांटों की बाड़ क्यों देते हो? बोला कोई उसको उजाड़ न जाए। बोला हम भी बाड़ लगा के बैठे होते हैं, कोई हमारी भक्ति को उजाड़े नहीं, बेकार के अपने आप चले जाएंगे, कोई समझदार होगा तो बैठेगा। ऐसे बहुत से मूर्ख आते हैं टाइम खराब करने वाले, काम कुछ नहीं होता है, ऐसे ही पकड़ने वाले बहुत होते। तो सावधानी करनी चाहिए। अब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मरीचि के छह पुत्र हिरण्यकशिपु के वहां पैदा हुए छह असुर, और छह करने लगे तपस्या। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे यहां किसी और की तपस्या कर रहे हो, मैं तुम्हें शराप देता हूं, अपने पिता के हाथों मारे जाओगे। और उनका पिता है कालनेमी, और ये कालनेमी के अपने बच्चे हैं, असुर हैं। इनका उद्धार कब होगा? द्वारका लीला में हम सुनेंगे। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम मां देवकी को चरण छूने के लिए सुबह आए। उस दिन देवकी कहती है, कृष्ण बलराम मैंने सुना है कि सांदीपनि मुनि आपका गुरुदेव, उसका बेटा पता नहीं कब का मर गया था, आपने उनको वापस लाके जीवित दे दिया। मेरे छह बच्चे कंस ने जन्म लेते ही मारे, मैंने उनको देखा नहीं है, क्या बेटा मुझे आप मेरे बच्चे वापस ला के दोगे? कृष्ण बलराम ने कहा जी मां, और दोनों भाई सूतल लोक में बलि महाराज के पास चले गए। बलि महाराज ने कृष्ण बलराम का स्वागत किया, बोला कैसे भगवान, क्या सेवा करूं? बोला ये छह बच्चे जो आपके यहां असुर हैं, ये मेरी मां इनको देखना चाहती है। तो वहां छह उनको लेके कृष्ण बलराम द्वारका आए, और देवकी के हृदय में वात्सल्य के कारण दूध आ गया, और भगवान का प्रसाद ही दूध पीने के बाद ये छह बच्चे असुर जूनी से मुक्त होके वापस देवता मरीचि के पुत्र बने। तो ये षड गर्भ बोलते हैं इसको, ये छह गर्भ जो कंस ने मारे ये देवकी के पुत्र नहीं थे, लेकिन देवकी के उदर से कालनेमी के पुत्र ही थे। इसका रहस्य भक्ति विनोद ठाकुर ने यह लिखा है कि मरीचि मन का देवता है, और मन के छह दोष है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। देवकी भक्ति है, भक्ति स्वरूप है। जब भक्त के हृदय से ये छह अवगुण नहीं मरेंगे तब तक भगवान का प्रकट्य नहीं होगा। भगवान का हृदय में प्रकट्य करने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छह जो दोष है ये नाश होने चाहिए। कंस है भय, भय से भक्ति के हृदय से दोष का निवारण होता है, तब जाके भगवान का प्रकट्य होता है। तो ये छठ गर्भों की कथा है। अब छह तो बच्चे मारे, सातवें में बलराम जी देवकी के उदर में प्रवेश किया। क्यों? बोला बलराम तो है भगवान की शेष शैया आसन है, अब श्री कृष्ण आने वाले हैं तो उनका आसन तो आना चाहिए ना, उनके बैठने के लिए जगह चाहिए ना, जगह को साफ करनी चाहिए ना, कथा करनी है तो कथा का आसन पहले रख दिया ना लाके। तो ऐसे देवकी के उदर में बलराम जी ने आके भगवान के लिए जगह तैयार की, उदर को तैयार किया। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में देवी को बुलाया और कहा देवी देखो ये बलराम जी असल में रोहिणी का नित्य पुत्र है, और वैसे अभी ये मेरे लिए आस्थान जगह बनाने के माम धाम एकम, वो मेरे लिए जगह बनाने गए हैं। वैसे मैं नहीं चाहता हूं कि वो देवकी के उदर से प्रकट हो, क्योंकि बलराम जी हैं शेष, कंस ने कुछ ऐसे पूछा तो कंस को मार ही देंगे, मेरे जन्म से पहले ही कंस मर जाएगा तो लीला कैसे होगी, इसलिए के लिए उसको वहां से रवाना कर दो। बोला क्या करूं? बोला इसको यहां से ले जाओ और खींच के रोहिणी के गर्भ में छोड़ के आओ, और दूसरा काम एक और करना, भद्रा आप मेरी छोटी बहन बन के यशोदा के घर में जन्म ले लो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं ये दोनों काम आप कर सकती हो। और बलराम जी को क्योंकि आप खींच के ले जाओगी, खींच के इसलिए उसका नाम संकर्षण होगा, बड़ा बलशाली होगा इसलिए लोग उसको बल कहेंगे और सबको आनंद देंगे, इसलिए उसका नाम राम होगा। भगवान ने कहा ऐसे कोई कहे बलराम पहले पैदा हुआ बड़ा है और कृष्ण बाद में हुआ छोटा है, तो तो भगवान बड़ा कौन हो गया, बलराम बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया? भगवान ने कहा मैं पहले ही नामकरण इसका कर देता हूँ, नामकरण तो गुरु करता है ना, तो मैं तो बलराम के जन्म से पहले नाम दे दिया। ऐसे लोग कभी कहते हैं राम का अवतार तीर्था में हुआ, कृष्ण का अवतार द्वापर में हुआ, वो बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया, ये अपराध है भगवान के लिए ऐसे कहना। हर एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार श्री कृष्ण भगवान स्वयं सदा प्रकट होते, एक बार नहीं हुए हैं, ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हुए हैं, 50 सालों में जितने दिन हैं उतने बार भगवान श्री कृष्ण इस धरती के ऊपर अवतार लिया। अब ये कथा आती है, इसको बताते हैं। तो यहां बलराम जी को योग माया ने देवी और देवी को आशीर्वाद दिया भगवान ने कि देवी कलयुग में लोग आपको भद्रकाली के रूप में, वैष्णवी के रूप में और जो है विंध्याचली के रूप में आपकी पूजा होगी। और फिर देवी ने बलराम जी को खींच के रोहिणी के उदर में रख दिया। रोहिणी नित्य आती थी मिलने देवकी और वसुदेव को। जेल खाना ऐसा था जैसे किसी बंगले में हाउस अरेस्ट किया हुआ हो। लेकिन जब रोहिणी गर्भवती हो गई तो रोहिणी को अक्रूर काका घोड़ी के ऊपर चढ़ा के और नंद भवन में छोड़ के आया। वैसे नंद और वसुदेव जो आपको हमने कहा चाचा के लड़के भाई है, सिर्फ माता का अंतर है, एक वैष्णव एक वैश्य माता है, एक क्षत्रिय, लेकिन और कोई अंतर नहीं है, रिश्तेदार हैं आपस में खानदान के हिसाब से। जो देवमीड के परजन्य और जो वसुदेव के पिता, क्या नाम है वसुदेव के पिता का, अरे कृष्ण सब। जब सातवां गर्भ देवकी का गिर गया, सबने कंस के ऊपर आरोप लगाया कि कंस ने ये भी गर्भ गिरा दिया होगा, लेकिन वहां वो रोहिणी के उदर में चले गए। और तब भगवान श्री कृष्ण देवकी के उदर में कैसे आए ही अब सुनने का है ध्यान से। भागवत में लिखा है भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर। भगवान जो सब विश्व के सब प्राणियों से प्रेम करते हैं, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, उनका सबसे मुख्य काम है भक्तों को भय से मुक्त करना। भक्तानाम अभयंकर आ विशेष अंश भागे न मन अनंक दुमदुबिही। वो भगवान अपने सारे अंशों के साथ जितने पहले अवतार हुए थे उन सबको अपने आप में समाकर और वसुदेव के मन में प्रवेश किया। और फिर लिखा है वसुदेव के मन में जैसे भगवान आए वसुदेव के अंदर से प्रकाश निकलने लगा जैसे सूर्य का तेज निकलना। और फिर वसुदेव ने देव रूपी देवकी के मंगल करने के लिए, विश्व मंगल के लिए उस भगवान को अपने मन से देवकी के हृदय में स्थान अंतर कर दिया, अपने मन से उनके दिल में बिठा दिया। इसको असल में कहते हैं गुरु जब शिष्य को दीक्षा देता है तो अपने मन में प्रकट हुए किए हुए भगवान को शिष्य के हृदय में स्थापित करता है। मानो वसुदेव ने देवकी को दीक्षा दे दी और देवकी भी चमकने लगी। और उदाहरण क्या दिया है, जैसे सूर्य अस्त होता है तो उसका प्रकाश चंद्रमा में चला जाता है, चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेते हैं, ऐसे वसुदेव से प्रकाश देवकी के हृदय में स्थान अंतर हुआ। और फिर देवकी का उदर फूलने लगा जैसे गर्भवती हो गई है। ये बालक का जन्म स्त्री पुरुष के मिलन से नहीं हुआ, ऐसा भागवत और उसके जितने भी टीकाकार आचार्य ये निर्णय करके बताते हैं। और इसका अर्थ ये है कि जब भी किसी भक्त का हृदय पवित्र शुद्ध हो जाता है उस हृदय का नाम वासुदेव होता है। सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्द्यते, सत्यम विशुद्धम, जो विशुद्ध सत्व है सत्वगुण से भी ऊपर, जब ऐसा हृदय तीनों गुणों से पवित्र हो जाता है तब भगवान का उसमें प्रकट्य होता है, उसको वासुदेव कहते हैं जिसके हृदय में भगवान का प्रकट्य होता है। तो अब देवकी से प्रकाश निकलने लगा और कंस आके एक दिन देखता है कि ये चमक रही है, लगता है कि मेरे मारने वाला इसके उदर में आ गया, लेकिन गर्भवती है, मेरे आश्रित है, इस वक्त मैं इसको मारूंगा तो बड़ी मेरी गिलानी बदनामी होगी, देखा जाएगा जब जन्म लेगा। तो इसका अर्थ क्या है, जब कोई भगवान को हृदय में प्रकट कर लेता है तो कंस जैसे क्रूर का भी विचार बदल जाता है, वो भी कुछ उसका आहित नहीं कर सकता। और इसके बाद कंस वापस लौट के चला गया। अब इसके बाद कथा आती है कि आधी रात को सारे देवता, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, चंद्र, वरुण, नारद, ये कंस के कारागृह में उस बालक की स्तुति करने आए जो अभी तक वसुदेव और देवकी के उदर में है, जन्म नहीं हुआ, उसकी स्तुति करने के लिए आए। और उस स्तुति में कहते हैं, आप सत्य है, आपका वचन सत्य है, आपने कहा था अवतार लेंगे, आप आ ही गए, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप आते हैं तब ये साधु आपके चरणों की नौका बनाकर भवसागर को पार कर जाते हैं, और ये महात्मा इतने दयालु है कि नौका को पीछे छोड़ के जाते हैं कि दूसरे लोग भी भवसागर पार कर सके। तो ये भक्ति का रास्ता संत छोड़ के जाते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करना ही भगवान के चरणों के नाव के ऊपर चढ़ना है। और फिर कहते हैं, वसुदेव देवकी, अब तुम्हारे को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आपका रक्षक, क्या सबका रक्षक अब आ गया। और ये कहकर सब देवता वापस जाने लगे। और उस वक्त चारों ओर से क्या हुआ है कि दिशाएं शुद्ध हो गई, आकाश में है तो श्रावण भादो, भादो का महीना श्रावण, बरसात होती है, और भाद्रपद के महीने में भगवान का प्रकट्य हुआ है। दिन कौन सा है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, रात के 12 बजे हैं, कब प्रकट होते हैं भगवान, अब फिर सुन लीजिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के आखिरी चरण में स्वयं भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण प्रकट होते, और हर बार होते, नदियां स्वच्छ हो गई, नदियों ने कहा जमुना हमारी बहन है, ये कृष्ण हमारा बहनो, ये आज से ये आने वाला है, हम बहुत शुद्ध होके बहने लगती हैं, साफ साफ हो गई, आकाश के अंदर बादल बड़े नाच करने लगे, बोला आज से हमारे नाम को लोग कृष्ण के नाम से जोड़ के कहेंगे घनश्याम, घन बादल को कहते हैं, बादल बड़े खुश होने लगे, और ब्राह्मणियों की अग्नाएं अपने आप जल गई, वो किन्नर देखने में बहुत कुरूप होते हैं और गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं, वो भेदभाव छोड़ के आपस में नृत्य करने लगे, और चारण और सिद्ध ये गाने लगे, और पृथ्वी तो भगवान जैसे कोई दुल्हन बनती है, ऐसे सब ऋतुओं के पुष्पों से सज धज के भगवान के स्वागत करने के लिए तैयार हो गई। तो अब कैसे भगवान प्रकट होते हैं कंस के कारागृह में, इस कथा को करने से पहले थोड़ा अपन गोकुल चलते हैं। हरे कृष्ण। गोकुल में जैसे आपको बताया परजन्य के 5 पुत्र हुए, और 5 पुत्रों में बीच के पुत्र नंद को राजा बना दिया, और 2 बड़े भाई और 2 छोटे भाई, और नंद बाबा का विवाह सुमुखा गोप की बेटी जशोदा के साथ हुआ, लेकिन कोई पुत्र नहीं था संतान, बाकी सब आनंद मंगल था लेकिन संतान नहीं था। तो ऐसे कहते हैं कि द्वादश अक्षर को अष्टादश अक्षर का पाठ भी किया, एकादशी का व्रत भी किया, एक दिन सुबह सवेले स्नान करके जमुना से नंद बाबा आ रहे थे तो ब्राह्मण बैठे हैं, ब्रजवासी कहते हैं नंद पुत्रवान भव। नंद कहता है क्यों महाराज मजाक कर रहे हो, अब इस उम्र में कोई मेरे को पुत्र होना है। ब्राह्मण कहते हैं आशीर्वाद जो दिया जाए वो आशीर्वाद नहीं होता है, जो अपने आप प्रकट हो जाए वो आशीर्वाद होता है। अब हमारे मुख से भगवान ने कहला दिया तो आपके तो पुत्र संतान होगा ही। और ये ब्राह्मण सीधा गए सांडल्य ऋषि के पास को, महाराज सांडल्य ऋषि हमारे मुख से तो ये आशीर्वाद निकल गया कि नंद पुत्रवान भव, अब क्या करने। सांडल्य ऋषि ने कहा कि फिर ठीक है हम करते हैं अनुष्ठान। और ये अनुष्ठान जब पूरा होने को लगा तो नंद बाबा देखते हैं कि यशोदा की गोद में कोई छोटा नीलमणि बालक खेल रहा है और उसके हृदय में कोई बालक प्रवेश किया है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है, वो नारायण घर के अंदर सालंग्राम शिला नारायण की उसकी पूजा करते हैं तो वो बालक दिखाई देता है। तो यशोदा कहती है आज इतने प्रसन्न क्यों है नंद बाबा। नंद बाबा को पूछती है, बोला क्या बताऊं मुझे लजा आती है, मैं आपके गोद में कोई नीला सा बच्चा खेलता हुआ देख रहा हूं। यशोदा कहती है मुझे भी लजा आ रही थी, मैंने देखा कि एक बच्चा आपके हृदय से निकल के मेरे हृदय में आया है और ये बातें कर रहे हैं इतने दिन में। इतनी देर में पूर्णमासी अवंतिका नगरी से चल के ब्रज में आ गई, ये सांदीपनी मुनि की माता है, और अपने साथ मधुमंगल को लेके आई और कहा नंद और यशोदा तेरे घर में तो जरूर बालक होगा। सबने कहा कि तो आपके मुख में खीर खंड, आपको हम कुटिया बनाते के देते हैं, आप यहाँ ब्राह्मणी बैठो। अब ये यहाँ बैठ गई है और उस तरफ भी यशोदा माँ का प्रसव होने वाला है तो वहां भी तैयारी बालक के जन्म की हो रही है। और पांचों भाइयों की एक बहन सुनंदा है, नंद बाबा की एक बहन है सुनंदा, उसको बुलाया गया क्योंकि बुआ आएगी तब घर में सारी, बच्चे के जन्म से पहले उसका होना वहां बहुत जरूरी है, ये पुरानी रीत है। तो अब सुनंदा को बुलाया गया है, सभी तैयारी करके बैठे हैं कि यहाँ अब जन्म होने वाला है और गाने बजाने की तैयारी करके बैठे हैं। लेकिन जैसे रात के 8-9 बजे है, योग माया ने सबको बैठे बैठे को सुला दी। अब यहाँ ये तैयारी हो रही है, वहां भी बच्चे की तैयारी हो रही है, वहां भी जन्म होना है ऐसा तो कथा हो रही है। अब यहाँ वापस चलते हैं, रात के 12 बजने के थोड़ा पहले वसुदेव अचानक देखते हैं तो एक चार हाथों वाला बालक शंख चक्र गदा पदम लिया और मुकुट पहना और गले में वैजंती माला है, कानों में कुंडल है। वसुदेव ने प्रणाम करके कहा हे भगवान त्रिलोकी नाथ कितने दयालु हैं, आप यहाँ जेल में भी प्रकट हो गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर देवकी ने कहा भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं लेकिन आप चार हाथ वाले त्रिलोकी नाथ मेरे पेट से पैदा हुए, लोग इस हंसी उड़ाएंगे, आप बालक बन जाओ लेकिन रोना मत। तब भगवान ने बोलना शुरू किया वसुदेव और देवकी आज 3 जन्म हो चुके, तुम जब प्रश्नी और सुतुपा थे तुमने तपस्या की थी, मैंने कहा क्या चाहिए, तुमने कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, मेरे जैसा और कोई होता नहीं है, इसलिए मैं अपने वचन को सत्य करने के लिए पहले आपके घर में प्रश्नी गर्भा होके पैदा हुआ, दोबारा आप कश्यप और आदित्य हुए, मैं आपके घर में वामन देव हुआ, और तीसरी बार आप में अपना वचन पूरा करने के लिए वसुदेव और देवकी आज वसुदेव कृष्ण होके प्रकट हो रहा हूं। अब माता आप भय मत कीजिए और पिताजी अगर आपको भय लगता है तो मुझे यहां से उठाइए और नंद गोकुल में यशोदा के पास छोड़ दीजिए और वहां जो एक बालिका पैदा हुई है उसको यहां लेकर आइए। ये कहने के बाद भगवान छोटे बालक का रूप धारण कर लिया। तो ये भगवान का जन्म आम बच्चे जैसा नहीं है साधारण, ये तो विष्णु के चार हाथ वाले रूप में प्रकट हुए, ये है भगवान जो अवतार लेने के लिए आए हैं वो। लेकिन आश्चर्य और लगेगा थोड़ा आगे चल के। अब ये कहने के बाद यहां बालक तो वहीं सामने उनके बच्चा हो गया और वसुदेव ने कहा ठीक है जैसे भगवान ने आदेश दिया है तो मैं इस बच्चे को गोकुल लेके जाता। उन्होंने बच्चे को गोद में ऐसे उठाया। तो वसुदेव के हाथ में जो हथकड़ी थी गुरु नीचे गिर गई, पांव में बेड़ियां थी वो खुल गई, वो भी नीचे गिर गई। वहां लिखा है कृष्ण वाहक वासुदेव, इसका मतलब जो भगवान श्री कृष्ण को ढोता है अपने हृदय में उसके सब बंधन खत्म हो जाते, उसका फिर कोई बंधन नहीं रहता है। जो हृदय में भगवान को सदा बसाए उसका कोई बंधन नहीं है। और जैसे दरवाजे के पास पहुंचे चौकीदार सो गए, और दरवाजा ऐसे खुला जैसे रात जाती है सूरज निकलता है अंधकार चला जाता है, कोई आवाज नहीं होता है। कभी आवाज हुआ है कि अंधकार जाने का? नहीं, दरवाजा खुलने का आवाज तक नहीं हुआ, जैसे सूर्य उगने के ऊपर अंधकार चला जाता है। ये काम किसने किया? माया ने। माया ने सारे मथुरा के चौकीदारों को सुला दिया, दरवाजे खुला दिए, और जैसे वसुदेव बालक को लेके बाहर निकला है, बादलों ने देखा बालक का तो स्नान भी नहीं कराया है अभी, थोड़ा सा ऊपर से बूंदाबारी करके बच्चे का स्नान करा देना चाहिए। तो थोड़ी सी बूंदाबारी होने लगी, अचानक इंद्र ने कहा ये तो हमारा स्वामी है, गई तो मौसम ऐसी है कोई बाहर खटिया रख के सोया हो और बच्चे को देख ले, वसुदेव को ले जाते हुए कंस को खबर दे दे, इसलिए ऐसी भारी मौसलाधार बारिश होने लगी कि हाथी की सूंड जितने ऊपर से बारिश होने लगी, कोई आंखों के सामने चीज दिखाई न दे। और वसुदेव अब अनंत शेष ने देखा ये इंद्र को क्या हो गया, इतना छोटा बालक इतनी सारी बरसात। सो वसुदेव के पीछे अनंत शेष ने छाता बना लिया, भगवान को ऊपर से ढक लिया। अब नसाओं पे आगे आएगा तो वसुदेव को भय लगेगा, पीछे से छाता बन गए हैं। और जमुना के किनारे आए तो जमुना को देखा जैसे जैसे महासागर के अंदर कोई बहुत तूफान आया हुआ हो, ऐसे जमुना भयभीत करने वाली हो बह रही है कि आदमी तो अंदर हृदय कांप रहा है जाने को, लेकिन वसुदेव उसके अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश करते हैं पानी सर तक नाक तक आया है, तब बच्चे को टोकरी में सर के ऊपर, जैसे कोई नए नवजात बच्चे को टोकरी में कभी कोई लाया है क्या? हाँ, अरे कोई बच्चा कहीं बच्चा कहीं पैदा हुआ टोकरी में कोई घर में लाता है क्या? तो फिर वसुदेव के सर के ऊपर टोकरी क्यों दिखाते? पानी जब नाक तक आता है ना, तब वो बच्चे को सर अपने सर के ऊपर करते। और ये पानी ऊपर क्यों आ रहा था? जमुना जी अपना हृदय खोल के भगवान को दिखाना चाह रही थी कि इसके अंदर कालिया बैठा हुआ है, ईर्ष्यालु, आप इसका आज नहीं तो कल उद्धार करना। और जमुना जी तो भगवान की पटरानी होनी है, भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाह रही है, तो भगवान ने अपना चरण निकाल दिया, जमुना जी की इच्छा पूरी हुई, पानी नीचे बैठ गया और वसुदेव जी गोकुल पहुंच गए। सब सोए हुए थे, वसुदेव जी सीधे नंद भवन में गए और यशोदा के पास में अपने लाला को छोड़ के जो बच्ची थी उसको उठाया और वापस आया। तब लिखा है कि जमुना जी ने ऐसे रास्ता दिया वसुदेव को जैसे हिंद महासागर ने राम जी को रास्ता दिया था। भगवान के पिता है तो दरवाजे सब खुले मिले, और इस बालिका को लेके जैसे पहुंचे हैं और सब दरवाजे वापस बंद ताले लग गए, और बच्ची ने रोना शुरू किया और पहरेदार भागते हुए निकली आकाश में उड़के आठ हाथों को धारण करके और कहने लगी हे मूर्ख कंस, तेरे को मारने वाला पैदा हो चुका है। ये असुर लोक भगवान से द्वेष करते हैं लेकिन देवी देवता के बड़े पुजारी होते हैं। कंस ने देवी को दिखा और प्रणाम करके कहा अरे मेरे से गलती हो गई, और वसुदेव और देवकी को कहता है देखो तो आकाशवाणी कितना धोखा किया, उसने कहा था कि आठवां बच्चा ये तो कुछ नहीं है तो देवी आ गई, ये आकाशवाणी ने झूठ बोला। बातों के आधार के ऊपर इस बात को खाई जाई गई है। पहला कहा जात कर्म संस्कार नंद भवन में हुआ, और जात कर्म संस्कार कहते हैं मां से नाड़े के संबंध को काटना। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि वसुदेव नाड़े के साथ कृष्ण को मथुरा से ले गए हो, इसका मतलब वहां बच्चा जन्म हुआ उसका नाड़ा काटा गया। और दूसरा कहते हैं भगवान ने जो शब्द कहा है, आप मेरी छोटी बहन होके पैदा हो अनुजा, तो इसका मतलब सब दूंगा। एक तो ये बात, दूसरी बात यह कि वसुदेव ने उसी वक्त कई गाय दान किया और कहा कि अब कौन सी मेरे पास सबसे अच्छी चीज है जो अब मैं बलिदान करूं, इतना बच्चा मेरे पास भगवान प्रकट हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए। वचन, आज मेरा वचन मैं इस बच्चे के ऊपर से कुर्बान करके फेंक देता हूं। और फिर बच्चे ने मुझे कहा है कि वसुदेव मुझे दे चलो नंद के भवन में, तो मैं भगवान का नौकर हूं कि कंस का नौकर हूं। भगवान कहता है मुझे छोड़ के आओ नंद भवन में, तो मैं भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा ना।